نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ڈاکٹر ریاض صاحب نے آپ کو میرا تعارف کروا دیا کمپیوٹر سائنس میں ایم ایس اور کرنٹلی ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر کام کر رہا ہوں اور یہ ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے کون انسٹیٹیوٹ آف پیور اینڈ اپلائڈ سائنسز جو ایجوکیشن کے لیے کام کر رہا ہے انجمن خدام قرآن کو ہم لوگ اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں ان ایریاز میں جہاں امپرومنٹ آ سکتی ہے ٹیچنگ کی کوالٹی ہو گئی کورس کریکولم ہو گیا پلاننگ ہو گئی اسٹوڈنٹس ڈیولپمنٹ ہو گئی اسٹوڈنٹ کیریئر ڈیولپمنٹ ہو گئی یہ تمام چیزیں یا فیملی کاؤنسلنگ ہو گئی یہ تمام چیزیں ہم لوگ پرووائڈ کریں اسی سلسلے میں بہت ہی اہم اس کے اوپر جو ہماری پریزنٹیشن ہے وہ ہے ایمز اینڈ ایکشن پاتھ کے نام حاصل اس کا جو ہے وہ ایک ایجنڈا دیکھ لیتے ہیں پہلے تاکہ پتہ چل جائے کہ آؤٹ کم اس کا جو ہے وہ کیا ہوگا اور یہ جو آدھے پونے گھنٹے ایک گھنٹے کی ہماری ڈسکشن ہے اس کے بعد ہم کیا چیزیں سیکھ لیں ایم کیا ہے کسے کہتے ہیں ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے نیڈس کیا ہیں نیڈس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اور ان کا رول کیا ہے ہماری زندگی میں امپورٹنس پلیس ویلیو آف ایم نیڈ اہمیت مقام اور قدر یہ تین الفاظ اگر اردو میں بولوں گے آپ کو بہتر طور پر کنوے کریں گے اس چیز کو اہمیت مقام اور قدر ایم اور نیڈ اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے ہماری آپس میں کیا ہے اور ہماری زندگی سے کیا ہے ایم کو ڈیفائن کیسے کیا جاتا ہے ہمارا ایم ہونا چاہیے اگر ہونا چاہیے تو اس کو ڈیفائن کیسے کریں نیڈ اینڈ رول آف کاؤنسلر کہ جس کو آپ استاد کہہ لیں شیخ کہہ لیں ٹیچر کہہ لیں رہنما کہہ لیں اس کی کیا ہمیں ضرورت ہے ایم ڈیفائن کرتے ہوئے اور ایکشن پاتھ کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایکشن پاتھ پلان کیسے کرنا ہے اس میں جو ہنڈرنسز ہیں ڈیفیکلٹیز ہیں وہ آپ کیسے کوپ کریں گے یا پہلے سے ان کو جو ہے وہ اپنی پلاننگ کا حصہ کیسے بنائیں گے آخر میں ہم لوگ آئیں گے اس سے کہ انڈیویجول ایم اور کلیکٹیو ایم کا ڈفرنس کیا ہے اور اس کا آپس میں ریلیشن کیا ہے آخر میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اس سے علیحدہ ہیں لیکن اس کے لیے بہت ہے یہ تمام جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ہم اس کو اس کانسیپٹ کو ضرور ڈسکس کریں گے آپ ابھی اس شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں کچھ سوالات کرنا چاہوں گا جس کے بارے میں آپ ہاتھ کھڑا کر کے اگر مجھے بتا دیں کہ آپ ایگری کرتے ہیں ان سے یا ڈس ایگری کرتے ہیں تو مجھے ایک اندازہ ہو جائے گا پھر بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے نارمل ہماری سوسائٹی میں عموماً ہم لوگوں کو یہ سننے میں آتا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے اچھا ٹھیک ہے اور دین اور دنیا متوازن ہونے چاہیے, اس کے بارے میں کیا ہے؟ ٹھیک, ان ٹرم وہی بات ہے, لیکن ایک اور طریقے سے جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہونے چاہیے, یا صرف دین ہی نہیں ہونا چاہیے, دنیا بھی ہونی چاہیے. ٹھیک, ان شاء اللہ اس کے اوپر آتے ہوئے بات کریں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے, کہ بیلنس ہے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. شروع کرتے ہیں, سب سے پہلے ایک اور نیت, بیسیکلی ہے کیا, ایک مثال سے سمجھتے ہیں اس کو, کہ جیسے دیکھیں کہ انوائرمنٹ کے اندر سب سے جو ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ دو چیزیں نظر آ رہی ہیں, ایک ہے پنکھا جو چل رہا ہے اور ایک جو لائٹ ہے. جی آپ کو مل جائیں گے اس کے تمام ہینڈ آؤٹ, یہ جو پریزنٹیشن ہے اور اس کے علاوہ اور جو میٹیریل ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو دے دیا جائے گا, آپ لوگ کو مل جائے گا. تو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جو میں بول رہا ہوں اس میں سے کوئی پوائنٹ اگر نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, لیکن جو پریزنٹیشن میں لکھا ہوا ہے آپ کو مل جائے گا, اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, پنکھے کی مثال ہم دیکھ رہے تھے کہ پنکھا ہے, اب یہ پنکھا جو ہے وہ کس چیز سے چلتا ہے؟ الیکٹریسٹی سے, اور اس کو کیا چاہیے؟ اس کو سروس چاہیے, اور الیکٹریسٹی کی ایک خاص مقدار ہے جس کو وہ آپریٹ کرے گا. اگر وہ ایکسیڈ کرے گی تو بھی آپریشن اس کا فیل ہو جائے گا, اور اگر وہ کم ہوگی تو بھی فیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کی یہ سسٹم کیا ہے یہ, اور اس کا ایک کہہ لیں کہ یہ ایک کام یا ایک آپریشن پرفارم کرتا ہے, وہ ہے ہوا دینا. ٹھیک ہے, اگر جو ہے وہ ہم یہ کہیں کہ یہ صرف الیکٹریسٹی کنزیوم کرتا رہے اور ہوا نہ دے, تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ تبدیل کر دیں گے, ریپیئر کریں گے, الیکٹریشین کو بلائیں گے, دکھائیں گے. تو اسی میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں. دیکھیں جو الیکٹریسٹی ہے, جو اس کی سروس ہے, یہ چیزیں جو ہے وہ اس کی نیڈ ہے, پنکھے کی نیڈ ہے, لیکن یہ اس کا جو ہے پرپز آف کریشن نہیں, یہ انکم اس کا ایم نہیں, اس کا ایم تو ہوا دے گا. اگر یہ ہوا نہیں دے گا تو ہم جو ہے وہ فوراً اس کو بدل دیتے ہیں, یا اس کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ الیکٹریشین کو بلاتے ہیں یا کنسرن پرسن کو بلاتے ہیں کہ بھائی فگر اٹ آؤٹ کہ کیا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے لائٹ ہے, بلب ہے, بلب جو ہے وہ آپریٹ لائٹ سے ہوتا ہے. اب لائٹ کی ایک وولٹیج لمیٹیشن ہے, اس کی کم یا زیادہ ہوگی تو نقصان ہو جاتا ہے, لیکن اس کا مقصد کیا ہوا؟ روشنی دینا. اگر وہ روشنی نہیں دے گا تو ہم اس کو چینج کر دیں. لائٹ وائز ایک اور مثال لیتے ہیں کہ کار, ہم لوگ عموماً زیادہ تر لوگوں کے پاس ہوگی, اگر نہیں ہے تو کم از کم کنوینس یا گاڑی یا بس وغیرہ تو ٹریول کرتے ہی ہیں. اب وہ جو کار ہے وہ چلتی کس چیز سے؟ اس کو پیٹرول چاہیے, اس کو فیول چاہیے, اس کو آئل چاہیے, اس کو سروس چاہیے, اس کو مینٹیننس چاہیے, اس کو ٹیوننگ چاہیے, اس کو صفائی ستھرائی چاہیے, اس کے ٹائروں میں ہوا پوری ہونی چاہیے. لیکن اس کا بنانے کا مقصد یا آپ کا لینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جب بھی آپ نے جانا ہو لے کے جائیں. اگر وہ آپ کو لے کے نہیں جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے لیے بیکار ہو جائے گی. یا اگر کوئی کار ایسی ہو کہ جو ہول سول جو ہے وہ صرف اور صرف پیٹرول ہی کھا رہی ہے, چلتی کم اور دھواں زیادہ رہتی ہو, لیکن جو ہے وہ پیٹرول اور اس کی مینٹیننس کاسٹ بہت, جس طرح کی عموماً ہمارے پاس پبلک ٹرانسپورٹ میں بسیں کہ دس منٹ کا سفر ایک گھنٹے میں طے کرتی ہیں, دھواں بہت دیتی ہیں, پریشانی بہت ہوتی ہے, چلتے میں ہلتی بھی ہیں, آوازیں عجیب و غریب قسم کی آ رہی ہوتی ہیں اس سے, تو ویسی گاڑی کو ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے چینج. ٹھیک ہے, تو ان تینوں چاروں مثالوں سے کافی حد تک آپ کو یہ دونوں کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ ایم کیا ہے اور نیڈ کیا ہے. نیڈ کی ڈیفینیشن ہے دا ان پٹ اور ریکوائرمنٹ آف دا سسٹم آر کالڈ نیڈ. پھر ریپیٹ کرتا ہوں, دا ان پٹ اور ریکوائرمنٹ آف دا سسٹم وچ آر ریکوائرڈ ٹو رن دا سسٹم آر کالڈ نیڈز آف دا سسٹم, بٹ جو ایم ہے اس کو ڈیفائن کریں گے. دا پرپز آف کریشن آف اینی سسٹم از کالڈ ایم آف دیٹ سسٹم. دا پرپز آف کریشن آف دا سسٹم از کالڈ ایم آف دا سسٹم. ٹھیک ہے, امپورٹنٹ کہ ہم نے تین باتیں کہی تھی کہ اہمیت, مقام اور قدر, ان دونوں چیزوں کی ہے کیا آپ کے, کہ اس سے کوئی نہ کوئی, اگر ایک اور چیز یہ جنرل اصول ہے اگر آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, کہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے عدل کہتے ہیں چیزوں کا اپنے مقام پہ ہونے کو، اور ظلم کہتے ہیں کہ چیزوں کا اپنے مقام پہ نہ ہونے کو. اب مقام پہ ہونے کے لیے جو چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ یہ چیز اپنے مقام پہ ہے، وہ تین چیزیں، اس کی اہمیت ہے، اس کی قدر ہے، اور اس کا مقام ہے. امپورٹنس، پلیس اور ویلیو. یہ تینوں چیزیں اگر ہمیں معلوم ہوں گی تو ہم کسی چیز کو اس کے جو ایکچوئل پلیس ہے اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں، اس پہ لے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم نے سسٹم کی بات کی تو اس میں ایک چیز آئی کہ ہم نے ایک سسٹم اسٹڈی کیا کار کا، ابھی پیرللی ایک ہمارا سسٹم بھی تو ہے انسان کا. اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، اب یہ ایک جو مشین بنائی گئی ہے اس مشین کی نیڈ کیا کیا ہے؟ ہمیں کھانا چاہیے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہمیں لباس چاہیے، ہمیں گھر چاہیے رہنے کے، ہمیں معاشرے میں اچھا مقام چاہیے، باعزت روزگار چاہیے، شادی ہے، بچوں کی پرورش ہے، گاڑی ہے، اور جتنے بھی آپ لیونگ اسٹینڈرڈ سے چیزیں کو ریلیٹ کرتے ہیں وہ تمام چیزیں انسان کی ضروریات ہیں. کیا ہم اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہم صرف ضروریات پوری کریں، یا ہم ہمارا جو ایم ہے اس کو اگر میں یہ کہوں کہ وجہ وجود تخلیق کیا ہے، یہ جو ایم ہے اس ایم کی طرف کیسے آنا ہے اس کو آخر میں دیکھیں گے. ابھی یہ چیز ریلیٹ کرنے سے ساتھ کے ساتھ ہمیں چیزیں کلیئر ہوتی جائیں کہ ہماری نیڈ کیا ہیں اور ہمارے ایم کیا ہونے چاہیے، ایم کو آخر میں دیکھیں گے. اب نیڈ میں دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کو ایمز اور نیڈ کا ڈسٹینس نہیں پتا ہوتا تو ہوتا یہ کہ الٹیمیٹلی جیسے سوسائٹی کا ایک پورا چل رہا ہے ہمارا انوائرمنٹ، اس کے اندر ہم لوگ جو ہے اپنی انرجیز، اپنی توانائیاں، اپنی عمر، سب چیزیں جو ہے وہ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے گزارتے ہیں. ضروریات سے آگے ہوتی ہیں خواہشات، ہم اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات بنا لیتے ہیں اور وہ ضروریات ہمارا مقصد بن جاتے ہیں اور اس کو ہی پورا کرتے کرتے ہم اپنی ذہن زندگی کو گزار لیتے ہیں اور آخر میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا. یہ جو 20-25 سال 50 سال زندگی ہے، اس زندگی میں جو توانائیاں اللہ نے دی ہیں وہ توانائیاں جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں ایک اچھا لیونگ اسٹینڈرڈ اچیو کروں، یہاں 20 سال پڑھتا ہوں اس لیے نہیں پڑھتا کہ میں جو ہوں وہ اچھی میری جاب بن جائے، 1-1.5 لاکھ کی جاب ہو، گاڑی ہو، فیسلٹیز ہوں، ایک ڈیفینس میں اچھا گھر ہو، اس کے بغیر زندگی کیا نہیں گزاری جا سکتی. اگر یہ اتنی ہی ضروری ہیں جو کہ نہیں ہیں تو ہم توانائی ہیں کیوں ان کے لیے ضائع کریں؟ آگے دیکھتے ہیں. اچھا ابھی جو بات یہ کہ اس میں امپورٹنس، مقام اور قدر، اس سے یاد ہم لوگ کا ایکسپیرئنس ہے، آپ لوگ سب ماشاء اللہ سے ایک سال کا کورس کر چکے ہیں، کافی حد تک دین کا فہم اور قرآن کا علم آپ لوگوں کو آ گیا ہے. ہم لوگوں کا یہ شروع سے ایکسپیرئنس رہا ہے کہ کبھی ایگزام دیتے ہوئے، جیسے جیسے ایگزام دے ایک اسٹوڈنٹ کی مثال لیتے ہیں کہ شروع میں جب وہ ایڈمیشن لیتا ہے تمام چیزیں دیکھتا ہے، کرتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، نارملی باقی چیزیں بھی کر رہا ہوتا ہے، کھیل بھی رہا ہوتا ہے، دوستوں کے پاس بھی جا رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے امتحان کا زمانہ قریب آتا ہے تو وہ اپنی جو ہے نا وہ چیزوں کو چھوڑنا شروع کرتا ہے، دوستوں سے نہیں ملے گا، ٹی وی اگر دیکھ رہا ہے تو وہ نہیں دیکھے گا، کمپیوٹر پہ چیٹنگ کر رہا ہے تو وہ نہیں کرے گا، یا گیدرنگ ہے، باہر آنا جانا ہے، وہ بھی چھوڑ دے گا. آخر میں کیا ہوگا؟ آئسولیشن شروع ہو جائے گی، گھر والوں سے نہیں ملے گا. جیسے جیسے ایگزام کی ڈیٹ آ گئی، اب کل پرسوں ایگزام ہے تو اسے ہوش نہیں رہے گا، کھانا بھی یا سونا بھی، اس کا تو ٹارگیٹ ہوگا کہ یار میرا ابھی اتنا کچھ رہتا ہے میں نے وہ کرنا ہے، یا اگر وہ کر لیا تو میں نے پوزیشن لینی ہے. اب پوزیشن کے لیے اگر میں اسٹرائک کر رہا ہوں تو پھر وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ ہوش نہیں رہتی کسی چیز، تو کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں ہم نے اپنے مقصد کے لیے جو اس وقت تھا اپنی ضرورت کو قربان کر دیا. یہی جو ہے وہ ان کی اہمیت، قدر اور مقام. یہ جو ضروریات ہیں وہ ہیں کس قدر، ضروریات ہماری کس قدر ہے؟ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا، یہ احساس ہو جائے گا کہ جو بھی ضرورت ہے ہماری، گھر ہے، شادی ہے، اسٹیٹس ہے، جاب ہے، اچھی تعلیم ہے، ٹھیک ہے، لگژریز آف لائف جن کو ہم کہتے ہیں وہ ہیں، ये सारी तो ज़रूरियात हैं। अब ऐसा कभी नहीं है कि इन ज़रूरियात के लिए ही सारी ज़िंदगी सर्व कर दी है। असल मकसद जो हमारा है उनके लिए ये कुर्बान हो सकती है। इसके लिए हमारे पास मिसाल क्या है? सबसे बड़ी मिसाल जो है वो इस पैमाने पर वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दें कि उनकी ज़िंदगी में आज हम जिस ज़िंदगी का मकासद के लिए हम जद्दोजहद करते हैं इन तमाम चीज़ों के लिए, आपके पास तो कुछ भी नहीं था। घर इतना था कि हाथ खोलें तो अल्टीमेटली जो है वो दीवारों से टकराएं, हाथ हाथ ऊपर करें तो छत खजूर के पत्तों की छत, लिबास में एवन तीन तीन दिन के फाते, ये तमाम चीज़ें क्या साबित शो करती हैं? ये बताती हैं कि जो ज़रूरियात हैं वो हैं कितनी, उसकी अहमियत कितनी है। सिस्टम रन करने के लिए ज़रूरी है डेफिनेटली। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो मतलब जब भूख लग रही तो हमेशा मुरतन गजा ही खाऊँ, या कुछ गोश्त का कम्बिनेशन तो कुछ बना हुआ होगा तो मैं खाऊँ। सिस्टम को एक एनर्जी चाहिए चलने के लिए। अल्लाह ने हज़ारों अखबार दिए जाए, उनमें से किसी को भी एडॉप्ट कर सकते, मना नहीं है। ये हमने देखना है कि इसको कितनी टाइम इस पर सर्व करें, जबकि एम जो है, देखिए एम की अहमियत यह है कि एम के बगैर हमारी कामयाबी नहीं। हमारी बुनियादी तौर पर जवाल का जो बायस हैं, हम जवाल में हैं हम लोग मुस्लिम उम्मा, इसका एक बुनियादी वजह यह है कि हम लोग एम लेस ज़िंदगी गुजार, कोई एम नहीं है हमारा, ना एम के लिए स्ट्रगल, ना एम का शऊर है, ना एम का जो है वो प्लानिंग है, कुछ भी नहीं। प्लेस इसका मुकाम ये है कि अगर इसका शऊर नहीं होगा तो मैं मेहनत नहीं करूँगा, मेरी 50 साल की ज़िंदगी एनर्जी और टाइम दोनों चले जाएँ, जा रहे हैं, जा चुके हैं। ऐसा ना हो कि ज़िंदगी चली जाए और हासिल कुछ ना, बाय द एंड ऑफ लाइफ जो मेरे पास कुछ ना, हमारे साथ वो मामला हो। और कीमत और कदर इसकी ये है कि इसके लिए सब कुर्बान हो सकता है, ये कुर्बान नहीं किया जाता। हमारे अखलाक में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में ये चीज़ हमें मिलती कि एम के लिए तो सब कुर्बान है, खाने का होश नहीं है, पीने का होश नहीं है, घर का होश नहीं है, बाकी किसी चीज़ का होश नहीं है। अगर होश है तो एक ही चीज़ का, मकसद क्या है, उस मकसद को इस ज़िंदगी में पूरा कर लूँ। या दूसरे लफ्ज़ों में जो सुप्रीम एम हमारा सबका है, जो हम कहते हैं कि अल्लाह मियाँ राज़ी हो जाएं, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी कि इस जुमले को क्वांटिफाई कैसे करें। अब पीछे जैसे हमने ये चीज़ देखी कि ज़रूरियात, जब इन चीज़ों का नीड्स और एम का जो है इम्पोर्टेंस प्लेस और वैल्यू मालूम नहीं होती, तो फिर उसका असर अल्टीमेटली ये होता है कि घंटों खाने की डिस्कशन होती है। आज हमारे घरों का आप जायजा लें, यही होता है कि घरों में खवातीन है या मर्द है, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन दोनों इस बात की फिक्र होती है कि भाई आज दोपहर में क्या पकेगा या रात में क्या पकाया जाए। क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम इतना ज़्यादा कीमती वक्त इस काम में सर्व कर दें? आज क्या पकाया जाएगा या कल क्या पकाया जाएगा, सारा दिन परेशानी में। अगर मैंने फंक्शन में जाना है तो हफ्ता पूरा मैं परेशान रहता हूँ, क्या पहन के जाऊँगा? अगर मैं वहाँ एक आम से लिबास में चला जाऊँगा क्या फर्क पड़ जाएगा? या उसके लिए ज़रूरी है कि हज़ारों रुपये का लिबास दे? जब ये तीनों चीज़ों का शऊर नहीं होता ना, फिर ज़रूरियात इस तरीके से ज़िंदगी में आती हैं कि आपकी एम की जगह ले लेते हैं और आपका जो वक्त और ज़िंदगी है इसमें सर्फ होना शुरू हो जाता है। लिबास की तैयारी देख लें, तकरीबात में देख लें, वक्त का ध्यान देख लें, ये सब सिर्फ और सिर्फ इसका बुनियादी रीज़न ये है कि एक तो हमें एम और नीड का नहीं पता है क्या, और दूसरा ये नहीं पता कि इसका मुकाम क्या और इनकी अहमियत क्या है हमारे लिए। ये सब उसी का जो है वो रिजल्ट है बेसिकली। अफसोस है कि हम लोग ये समझते हैं, इसकी एक मिसाल है बड़ी ज़बरदस्त, न्यू रोड मैप फाउंडेशन है अमेरिका की, इसकी जो फाउंडर हैं CEO हैं कार्टून हैं, उनका अपना ऑटोबायोग्राफी में एक चीज़ लिखी हुई है कि अपनी ये फाउंडेशन जब उन्होंने बनाई उससे पहले की ज़िंदगी बताती है कि मैं इस बारे में बड़ी सहती और परेशान रहती थी कि क्या खाया जाए, 200 किस्म के जूसेज होते थे मेरे ड्रॉ में रखे हुए, एनर्जी की कैलकुलेशन के चार्ट लगे होते थे और जहाँ मैंने जाना है उसके हिसाब से देखो पूरी प्रिकॉशंस लिखी होती थी, ये ऐसे बैठना है, काम नहीं होना चाहिए और इन तमाम चीज़ों का डेली इतनी एनर्जी देनी है, अगर जाना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, लिबास का और दूसरी चीज़ों का। तो उससे इस चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की कि ज़िंदगी बहुत परेशान हो गई, कि ज़िंदगी में एक अजीब सी किल्पत और एक टेंशन क्रिएट हो गई, हर वक्त ये टेंशन रहती है कि अब जो मेरी एनर्जी पूरी भी नहीं हुई, या मैं अगर मैं किसी फंक्शन में जाना है तो उसके लिए मैंने सब काम कर लिए नहीं कर लिए, लोग कैसा समझेंगे। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि इसे छोड़ा जाए, फिर उन्होंने इन तमाम चीज़ों को छोड़ना शुरू किया और आखिर में जब वो तमाम चीज़ों को छोड़ चुकी तो आखिर में उस पर आ गई कि आप मुझे जो चाहिए वो मैं दो चीज़ों से ले सकती हूँ। इसकी बहुत अच्छी मिसाल हकीम सईद साहब की, हकीम सईद साहब जो नाश्ता करते थे वो सिर्फ जूस का होता और डॉक्टर अताउर रहमान का लंच जो है ना, आपको बताऊँ मैं कितना है, 4 से 5 मिनट का लंच है उनका, जो उनको एनर्जी चाहिए उसके सोर्सेज अल्टरनेटिव होता है, फ्रूट होता है, फल होता है, कोई भी और एक जूस होगा या इस तरह का अल्टरनेटिव मील्स होगा। हमारे असाजा में अगर आप पुराने देखें लोगों को तो लोग जो है वो सत्तू पी लिया करते थे कि रोटी चबाने में बड़ा वक्त ज़्यादा होता है, जितनी देर में रोटी खाई जाती है उतनी देर में तो 50 आयात तिलावत हो जाती है। ज़िंदगी की कदर अगर मालूम हो तो इन तमाम चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ शुरू हो जाता है, ये अल्टीमेटली इसका हासिल है। हमारी दो वाली मिसाल है ना कि तकलीफ के बाप को राहत नहीं कहते, जो चंदे नफस हो उसे लज्जत नहीं कहते, दिबाजाए मातम को मुसर्रत नहीं कहते, जिस शय को पना हो उसे नेमत नहीं कहते। हमने ये तमाम चीज़ों को नेमत समझ लिया। अब जब एम और नीड का हमें डिफरेंस पता चल गया तो अब बात यह है कि क्या हमारा कोई एम होना चाहिए, आप लोग एग्री करते हैं इससे कि एम होना चाहिए, होना चाहिए। अब एम को जो है वो डिफाइन कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, क्वांटिफाई तो करना है ना। अल्लाह की रजा तो एक बहुत ग्लोबल या यूनिवर्सल जो है वो जुमला है, क्योंकि एकदम हर इबादत का हासिल है कि इसके बगैर कोई चीज़ कबूल नहीं होती। लेकिन जब आप मरें तो फिर कैसे मरें, ये अल्लाह की मियाँ के दरबार में उठाए जाएँ तो कैसे उठाए जाए, कैसा उठना चाहते हैं या जैसे लोग आपको मरते वक्त समझना चाहते हैं उसको हम कह सकते हैं कि हमारा एम होना चाहिए। इसकी अहमियत डिफाइन करने की वही है जो अब तक हमने देखी, कि अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो फिर जिंदगी गुजर जाएगी और कुछ हासिल नहीं। एमलेस और एमफुल जिंदगी में फर्क क्या है, एक तालिबे इल्म की मिसाल लेते हैं, हमारे पास कुछ तालिबे इल्म की मिसालें हैं, मैं आगे चल के इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि अगर एक तालिबे इल्म जो है वो अपने एम के साथ मेहनत करता है, उसका एम अगर पोजीशन लेना हो तो वो पोजीशन के लिए शुरू दिन से मेहनत कर रहा हो, और जब वो एग्ज़ाम पास कर लेता है तो क्या होता है कि वो नॉर्मली अपनी पोजीशन अचीव कर चुका होता है। हमारे पास जो है वो इसकी मिसाल जो है वो एक स्टूडेंट है हमारे जो नेवी से जिन्होंने सौड़ा पाना लिया मुश्ताक रसूल बिरा, और इसके अलावा जो है वो एक दो मिसालों में और हैं, इंटर के स्टूडेंट्स हैं, पोजीशन ली उन्होंने इंटर में फोर्थ, शुरू दिन से वो जो मेहनत उनका एम था कि मैंने पोजीशन ली। अगर एमलेस जिंदगी होती है ना फिर ये होता है यार एक पेपर रह गए, पेपर नहीं रहा तो 50% आ गए, अब देख रहे हैं यार ये आगे क्या होगा, एडमिशन किस में लेना। ये हमारी ज़िंदगी के हज़ारों एक्सपीरियंस हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा सोचना शुरू करें, जो काम इरादे और मकसद से किया गया उसकी आउटपुट और जो विदाउट एम किया गया उसकी आउटपुट क्या है, आप लोगों को पता चल जाएगा। इवन मुझे नवीद साहब ने कहा था कि इतनी सी उम्र में इतना कुछ जो है वो कैसे कर रहे हैं आप, तो उसकी एक बुनियादी चीज़ ये है कि एक मकसद की आगही जैसे हो जाती है तो फिर तमाम चीज़ें उम्र से पहले होना शुरू हो जाती। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंह कैसे पता कर लिया, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने 12 साल की उम्र में फतवा देने की अथॉरिटी कैसे ले ली, वो मकसद था, शऊर मकसद जितना पहले आ जाता है उतना पहले जो है वो चीज़ें आपके आपको हासिल होना शुरू हो जाती, फिर वो तब्दीली आना शुरू हो जाती है, आप तब्दीली लाना शुरू कर देते। वरना ये होता है कि 60 साल या 80 साल या 100 साल की भी ज़िंदगी हो तो कुछ नहीं होता, नॉट ए इवन अचीवमेंट ऑन योर अकाउंट। अगर आप सोचें जिस जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं उसका हासिल क्या है, शादी हम भी करते हैं, शादी तो बच्चे हमारे भी होते हैं, जानवरों के भी होते हैं, वो भी पालते हैं, घर वो भी बनाते हैं। किसी भी आप जो वो जानवर का मुताला करें, मैना का ले लें, चिड़िया के ले लें, कब्बे का ले लें, हमसे ज़्यादा अच्छा घर बनाते हैं वो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, अपने बच्चों को भी पालते हैं। हमें और उनमें कोई फ़र्क रहा, हम भी वही करें। इंटर्न पढ़ लोगे ठीक है, क्या हो जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी फिर क्या होगा, शादी हो जाएगी, शादी के बाद बच्चे होंगे उन्हीं में सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी और मर मरा जाएंगे, अल्लाह मियाँ के सामने जो है वो जाएंगे तो बेकार कूड़े के कूड़े। अब इसको जो है वो इसी में जो है वो एक मिसाल जो है आपके सामने, इंडिया का एक 17 साल का नोबल लॉरिएट निर्मला, 17 साल में उसने नोबल प्राइज कैसे ले लिया। एमलेस और एमफुल जिंदगी का डिफरेंस बेसिकली क्लियर करना चाह रहा हूँ, आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, काफ़ी हद तक आ गया होगा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अरसे में ये दीन को उसके सही शक्ल सूरत के साथ लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया, अमली नमूने के तौर पेश कर दिया, कितना अच्छा है। 22 साल कुछ ना राउंड ऑफ करने से ही था ये मकसद, जब मकसद का पहले दिन से शऊर होता है तो फिर आप बहुत जल्दी चीज़ों को अचीव करना शुरू करते हैं। अब इसमें जब आता है कि हम ईम को डिफाइन करते हैं तो उसमें जो जुमला मैंने पहले कहा था कि अल्लाह मियाँ की रजा हमारा मकसद है, बहुत अजीम और बहुत बड़ा जुमला है, इसको टेंजेबल कर। अगर टेंजेबल नहीं होगा तो आपकी एनर्जी बेकार विदाउट एनी डायरेक्शन गुजर जाए। देखिए मरीज की बस में बैठ के सदर की तमन्ना करना महज बेवकूफ़ी है, हम लोग जो है वो यही करें। अल्लाह मियाँ की रजा तो कहते हैं लेकिन आपका जो दिन की रूटीन है वो कहाँ ले जा रही है आपको, वो जो रूटीन की आपकी गाड़ी है वो कहाँ ले जा रही है आपको, बाय द एंड ऑफ लाइफ आप कहाँ पहुँचेंगे। रूटीन में तो मेरे पास 1 घंटा नहीं अल्लाह ने के लिए, या अगर है तो ठीक है यार ऑफिस के बाद टाइम मिलेगा तो फिर वक्त दे देंगे, दिन का काम करना है वक्त मिलेगा तो कर लेंगे, ना हो तो मिला दिन जो है वो मोहताज बन लूंगा। सोचने वाली बात है ये सब कि हमारे पास जो है वो जब शऊर नहीं होगा हम यही करें। आज हमसे पूछें अल्लाह में राजी हो जाए, अल्लाह में जन्नत दे देंगे, कैसे जन्नत दे देंगे, अल्लाह में तो अल्लाह मियाँ ने तो कुरान में कहीं वादा नहीं किया कि बगैर जो है वो मुत्तकी लोगों के जन्नत दे देंगे। सूरह असर में चार खुसूसियात को जो जिक्र किया गया है वो कौन लोग, हम तो उनमें से एक भी नहीं करते। योम सब का वाक्य क्या बताते हैं, तीन कैटेगरी होगी थी लोगों की, आप लोग जानते होंगे, एक लोग जो थे मछलियाँ पकड़ते थे, एक लोग जो थे जो उनको मना करते थे खुद ही काम नहीं करते, और तीसरे लोग वो जैसे जो मिलते रहते थे उनसे पढ़ते नहीं। दुनिया वालों से भी रखो और दीन वालों से भी बना के रखो, ये वो लोग खुद नेक अमल तो कर रहे होते लेकिन उनको मना नहीं करते थे, यार दुनिया भी चलानी है हमने मिलते रहो। तो अल्लाह ने जब अदाब भेजा तो ये जो दरमियानी लोग थे जो उनसे मिलते थे इनको भी अलर्ट कर दिया। कामयाबी नेक काम करने, ईमान लाने और नेक काम करने पर नहीं है, कुरान कहीं जमाना नहीं देता इस बात। नेक काम करने के बाद क्या है, अच्छाई की तरवीज करो और उसके ऊपर सब्र करो। मुस्लिम को जो है ना, मुस्लिम के लिए कुरान कामयाबी की जमानत देता है, सोलह के लिए नहीं देता, वो अल्लाह मियाँ के सवाब जीत से चला जाता है। वो बात याद रखिए, अल्लाह मियाँ की अपना इख्तियार है, चाहे तो जन्नत में भेज दें, माना कि गफूर रहीम है लेकिन कहा भी तो है, वो क्यों नहीं याद रखा। इन्ना बच्चा रब्बी का शदीद, अल्लाह मियाँ की पकड़ सख्त है, ज़िंदगी में नहीं पकड़ रहे, आखिरत में पकड़ लिया, मुखलिस कर दिया, क्या करेंगे। क़यामत का पहला मुकदमा अगर आपको पता हो जो पेश होगा वो क्या है, कि एक आलिम को, एक शहीद को और एक सफ़ी को बुलाया जाएगा, ये लोग नेक लोग थे, नेकी पर इनका खात्मा हुआ था, और जब आलिम से पूछा जाएगा कि तुमने ज़िंदगी कहाँ गुजारी, तो वो जवाब देगा कि अल्लाह इल्म हासिल करने में, तेरी रजा के लिए खर्च करने में, कहेंगे झूठ बोलता है, उन्हें इल्म इसलिए हासिल किया कि तू आलिम क्या है। अब ये उसके दिल का मामला है, जो सिवाय रब्बे कायनात को किसी को नहीं पता, इसको जहन्नुम में डाल, ऊंधे मुंह से जहन्नुम में फेंक दिया जाए, ये क्या चीज बता, किस धोखे में हम लोग। मलेर की गाड़ी में बैठ के कहते हैं सदर चले जाएंगे, ये तो वो वाली बात। इसी तरह जो है वो सफी आएगा, शहीद आएगा, उन दोनों के दिलों में जो है बेसिकली शहीद को होगी तमन्ना के बहादुर कह रहा हूँ, और सफी को होगी कि सफी कह रहा हूँ, मतलब ये कहेंगे कहाँ जा चुका, दुनिया में ये लोगों ने कह दिया, अब आखिरत में ऐसा नहीं है, ये चीज़ होगी। अब कुरान इसके बारे में क्या कहता है, हाउ टू हम कैसे शुरू करेंगे, ये एक हैंड आउट है जिसमें कुछ सवालात हैं, ये डॉक्टर साहब के पास हैं, आप लोग ले लीजिएगा, उसको फिल करिएगा, टाइम निकाल के सोच के उन सवाल के जवाब लिखिएगा। इंशाल्लाह 5 डेज या 6 डेज के बाद यहाँ दोबारा हमको जमा करवा दीजिएगा। आखिर में मैं बताऊँगा इसके अलावा और क्या चीज़ें उस दिन आप हैंड आउट ले सकते हैं, तो उसमें फिर पता चल जाएगा कि इसको हम कैसे शुरू करें और हम लोग इसमें आपकी कैसे असिस्टेंस करेंगे। अब उसमें ये बात आती है, ये तो पता चल गया कि हमारा एम डिफाइन होना चाहिए। क्या हम खुद डिफाइन कर सकते हैं? हम खुद डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इसमें कुछ जो है ना कबाबते हैं। लेकिन जब आप किसी सिस्टम का हिस्सा होते हैं ना, तो उस सिस्टम की बुराइयाँ आपसे आया नहीं, क्योंकि आप अच्छाइयों से मुस्तफीद हो, तो आप अच्छाइयों को देखेंगे, बुराइयों को कम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। आप कभी जो है ना वो उस सिस्टम की बुराइयों को अपने लिए बुराई नहीं समझते। नॉर्मली जैसे हम आज सोसाइटी में क्या करें, इस सोसाइटी में जितनी भी बुराइयाँ हैं, बुराई देख देख के या दूसरे लफ्जों में कहें कि बुराई देख देख के हमारे अंदर से वो जो है वो चीज़ क्वालिटी ख़त्म हो गई है, जो बुरी लगी केबल है, टीवी है, चल रहा है, अब वो उसको बुराई महसूस ही नहीं होती उसकी वजह ही, या दिल हमारे इतने स्याह हो चुके हैं कि वो फिल्टर हमारा काम ही नहीं करता। जो अंदर जो है रिपोर्ट करें, जैसे तो फिल्टर है ना, वो बताता है कि बुरी चीज़ आ गई है। अगर वो फिल्टर देखें, वाटर फिल्टर जो होता है, अगर वो खुद गंदा होता है तो वो प्योरीफाई नहीं करता चीज़ों, पानी जो है वो गंदगी वाला ही नहीं चला जाएगा हमारे तक वो। अब इसके लिए फिर जो है वो ज़रूरत है, देखें काउंसलर की, इसकी ज़रूरत क्यों है? देख काउंसलर की ज़रूरत इसलिए है कि वो हमें हमारे हालात, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारी एबिलिटीज या हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेसेस और हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हमारी सोसाइटी का जो एक एनवायरनमेंट है उसके मुताबिक हमारे को एम डिटरमिन करने में मदद करते हैं। और उस तक का जो रास्ता है या जो एक्शन पाथ है वो डिटरमिन करने में हमें बता सके कि इसमें आपको ये मुश्किल आ सकती है, इन मुश्किल को कैसे आप ओवरकम करेंगे। एक नौजवान जो अभी अपनी ज़िंदगी के इब्तदा में है, उसको तो अभी बहुत सारे मराहिल आप तय करने हैं। जो लोग दरमियान में पहुंच चुके हैं, औलाद है, घर बार है, छोड़ना नहीं है, अभी उनकी तरबियत अगर नहीं हुई तो उनकी तरफ से कैसी हिंदर्सिस आपको आ सकती है, कैसी मुश्किल आपको आएंगी। जॉब का अगर टाइम आपका 12 घंटे का, तो आप कैसे अचीव करेंगे इस काम? ये तमाम चीज़ें जो है वो आपको एक काउंसलर बताएगा। इसकी अहमियत इसीलिए, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, क्या हर कोई हर किसी को हम जो अपना काउंसलर बना सकते हैं एम के लिए, हर एक से कंसल्ट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, हमें करना भी नहीं चाहिए। अब उसके लिए जो है वो ये बिल्कुल उस मालिश की तरह है। देखिए जब बीमारी होती है तो हम डॉक्टर जो है वो उसके बाद सुन के जाते हैं, ऐसे नहीं जाते कि जिसके साथ डॉक्टर लिखा हुआ चले जाने के बाद, पहले वेरीफाई करते हैं हम ये चीज़ ऑथेंटिक है, कहाँ से पढ़ा हुआ है, अपने जानने वालों से, मिलने वालों से, कितनी इसकी अप्रोच कैसी है, तशखीस कैसी है, कितना इसको जो है कमांड है अपने सब्जेक्ट पे, वो तमाम चीज़ें देखने के बाद फिर हम जाते हैं, फिर हम एक्सपीरियंस करते हैं उसको। अगर कहीं भी शक थोड़ा सा भी आता है उसके डीलिंग में या उसके हमारे जो है डायग्नोसिस में या ट्रीटमेंट में, तो हम उसमें सो देते कि बिल्कुल वैसा ही मामला है। बल्कि उससे भी ज़्यादा अहम मामला है कि अगर वो आपको गलत गाइड कर देगा तो आप तो उसको सही समझ के चलते रहेंगे और बाय द एंड ऑफ क्लास आपके पास हुआ। तो इसकी खसूसियात भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो काउंसलर या आप कह लेंगे अपने लिए जो भी शख्स ऐसा टीचर के रूप में, शेफ के रूप में आप जिसको जो है कंसल्टेंट के तौर पर रखेंगे तो वो कैसा हो? नंबर एक तो ये कि उसको मुस्तकी होना चाहिए, फिर उसको क्वालिफाइड होना चाहिए, साहिब इल्म और साहिब शऊर हो, हिकमत और दानाई का उसे पता हो। क्योंकि अगर हिकमत और दानाई नहीं होगी तो हो सकता है कि वो डॉक्टर की तरह जो आपको कुछ एहतियातें बता दें, आपको कहें बाद में उसके उसकी वजह से डेफिशिएंसी आती कि कब किस चीज़ को छोड़ना है, कितना छोड़ना है, कब किस चीज़ को अपनाना है, कितना अपनाना है, किस तरह से अपनाना है, ये तमाम चीज़ें और तजर्बेकार मेच्योर ये क्वालिटीज़ जो हैं अगर किसी शख्स में हैं और वो काउंसलिंग या मुशावरत करता रहता है, देता रहता है, तो आप जो है वो उसको अपना काउंसलर या अपना जो है वो के लिए कंसल्टेंट रख सकते हैं, ये होना चाहिए। फैमिली डॉक्टर होता है आपका, फैमिली लॉयर होता है आपका, दर्जी आपका होता है, आप हर किसी नाई के पास जाके बाल नहीं कटवाते, तो क्या जिंदगी के मामलात को डिस्कस करने के लिए कि आगे हम कैसी जिंदगी गुजारें या हमारे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे पास एक शख्स ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हम कंसल्ट कर सकें। लेट्स से मुझे बच्चों के एडमिशन का मामला है, कहाँ एडमिशन करवाऊँ, इनका एम क्या होना चाहिए, इनकी डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, घर में अगर जो है वो बाकी लोग हैं तो हर एक बेटी की अगर शादी करनी है तो कैसा आदमी है, आगे उसकी तरबियत कैसे करनी है, या अगर बच्चों की तरबियत है वालदैन के लिए या वालदे के लिए तो कैसा इन्वायरमेंट रखना है। अगर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बच्चों का जो है बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, तो वो कैसे डिटर्मिन करेंगे आप कि अब जो इसमें प्रॉब्लम आ गया या बच्चे में देर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, कि माशरे में या क्लास में कहीं डिस्टर्बेंस हो रही है जिसकी वजह से उसके रवैये में तब्दीली आ रही है, तो कैसे डिटर्मिन करना है कि कोई शख्स हो जिससे आप डिस्कस कर सकें ताकि वो आपको डिटेल में बता सके। देखिए जब मर्ज बढ़ जाता है ना, जब कैंसर हो जाए तो फिर जो है ना वो इलाज नहीं हो सकता, फिर या तो आप उसको काट देते हैं या फिर वो आपकी बॉडी में रप्चर करके आपकी ज़िंदगी ले लेते हैं। आज हमारी औलादों का ये जो कंडीशन हो रही है, या तो हम उनकी तरबियत ना करने के बायस, अपनी जिम्मेदारियाँ जो है अदा ना करने के बायस, या तो हम उनको क्या होता है कि जब वो बड़े होते हैं कैंसर होता है उसके, आपका एहतराम नहीं करता, बुढ़ापे में आपको आप कुछ भी नहीं देता, आपके लिए सोचता नहीं, क्या ही कैंसर होता हो गया ना वो। अगर उसके शुरू से ही सही तरबियत या वो तमाम चीज़ें हमने दी होती जो डिस्टर्बेंस माशरे में आ रही हैं, जो नेगेटिव प्लस जो है काम कर रहा है, उस नेगेटिव प्लस में उसको हमने इतनी पॉजिटिव स्ट्रेंथ दी होती कि नेगेटिव का मुकाबला कर सके, तो यकीनन वो आपके सामने जो है उस कुरान मजीद की आयत के मुताबिक खड़ा होता, कंधे झुका के खड़ा होता, उफ नहीं कहता आपके साथ जो है वो कुल्लामा कौलन करीमा वाला बात करता कि नरमी से पेश आते। अब क्या होगा, या तो जो है आप उसको अलग कर देंगे, जैसे हमारे माशरे में आजकल मिसालें बहुत बदतमीज और बहुत जो है वो ना अंजार हो जाए तो हम उसको अलग कर देते हैं, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी, इट्स माई लाइफ, ये वाली चीज़ होती। या फिर अगर वो नहीं करेंगे तो वो आपके साथ रह के आपकी ज़िंदगी के फातने का बायस बन जाएगा, आप इसी फिक्र में मरते रहें, जलते रहें कि बदतमीजी करेगा और आपको ईजा देगा, अपनी आप में तो बर्बाद करेगा ही। तो ये चीज़ सोचने वाली, एक्शन पास। एक्शन बात देखिए, अब जब आपने एम को टेंजिबल कर लिया कि मेरा एम लेट से इलाही कलमतुल्ला है, इलाही कलमतुल्ला भी बहुत बड़ा जुमला है, इलाही कलमतुल्ला के लिए कहाँ काम करेंगे, क्या अपने जो इल्म और जो हुनर है उसको छोड़ के काम करेंगे, उसी में रह के काम करेंगे तो फिर काम कैसे होगा, ये सवाल आपने सोचने वाले। अगर नहीं पता होगा कि वो एक्शन पास कैसे होगा तो हम जो है वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, ज़िंदगी गुजर जाएगी। अगर एक स्टूडेंट को जो इंटर में आता है उसे पता हो अगर फील्ड कौन कौन सी हैं, मैंने इंजीनियरिंग में जाना है, सिविल इंजीनियरिंग की ये डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स की ये है, इलेक्ट्रिकल की ये है, और मैंने ये तीन फील्ड टारगेट की हुई हैं, इनकी यही एक्सपीक्टेशन है जो काम करवाते हैं या इस पर डिग्री ऑफर करते हैं, इनकी डेट ये पहले से उसको पता हो। एक स्टूडेंट जो इंटर में आता है उसे अगर फर्स्ट ईयर में इन चीज़ों का मालूम हो तो वो शुरू दिन से उतनी परसेंटेज की मेहनत करता है और उसे पता होता है कि अगर ये खुदा ना खास्ता नहीं आ सका मेरा नाम तो मेरे पास अल्टरनेट क्या होगा। देखिए जब खास्ता हो जाए ना तो उसके बाद जो है वो आप नुकसान को बताते हैं। अगर मैं पहले से तैयार हूँ ना, आज की मिसाल लेते हैं कि घर में अगर मुझे पता है कि आग लग सकती है किचन में और मैं पहले से अगर मैं तैयार हूँ तो मैंने आग बुझाने के सारे इंतजाम पहले से तैयार रखे हैं। ऐसा सामान जो नुकसान जिसका हो सकता है जिससे आग फौरन भड़क सकती है वो मैं उस आग के करीब नहीं रखूँगा, पहले से चीज़ें सेट होंगी और मैं आग लगने ही नहीं दूँगा। ये तो है अप्रोच एक ऐसी, ठीक है, तीन तरह की अप्रोचेज होती हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन सी होती है। फिर अप्रोच ये है कि ठीक है आग लग गई, अब जब आग लगी तब आपने हरकत करना शुरू की, बुझाओ आप पानी लाओ ये करो वो करो, अब क्या नुकसान कम कर। अगर उस वक्त भी आग में जरूरत नहीं है यार ऐसे कुछ नहीं है थोड़ा सा चूल्हा ही जाएगा तो फिर क्या होगा, आप खुद जल जाएंगे। आज हमारे साथ वो हम खुद इस आग में जल रहे हैं, एहसास नहीं हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, यही चीज़ तो है। सबसे बड़ा जो है लड़ने के अदाबों में से एक अदाब ये भी तो है कि ना वो अफसोस के वो एक शेर का मिसरा है ना वाय नाकामी के अफसोस मताए करवा जाता है, अफसोस के अफसोस दिया जाता है, तो अफसोस दिया करके चला गया हमारा, इसका हासिल ये। अब इसके लिए प्लान जो करना है उसमें तमाम चीज़ों का हासिल होता है। आप पहले से सोच के बैठे कि मेरी फैमिली एक जो है वो मीडियम लेवल की फैमिली है, या मैं बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे पास पैसा नहीं है फैमिली के पास, जाहिर सी बात है कि सरकारी यूनिवर्सिटी को अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि उसकी फीस 70-80 हज़ार अल्टरनेट क्या है, मैंने इंजीनियरिंग तो करनी है, तो वे और पहले से बताओ। इसी तरीके से ज़िंदगी में अगर आपने बच्चों के मामला तय करने हैं तो आपको पहले से बताओ मेरी लिमिटेशन ये हैं, उन लिमिटेशन में जो मेरे लिए हल क्या है। अगर खुद डिटरमिन नहीं कर सकते तो काउंसलर मैंने पहले कहा है, कंसल्टेंट मैंने कहा है, उस शख्स को जरूर रखते हैं, उस रोल के लिए किसी को जरूर अपॉइंट करें, ढूंढें ऐसे लोग, इंशाल्लाह बताऊंगा कि ऐसे लोग हैं हमारे पास। हिंड्रेंसेस प्रॉब्लम्स आ गए। अब ये जो हिंड्रेंसेस है ना, आप प्लानिंग और डिफिकल्टी के हवाले से एक बड़ा अच्छा वाक्य है आपको सुना देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि किसका जो है वो अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम उस वक्त भी तो कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी या जब ब्याह के मामला आएगा तो देखा जाएगा, अभी तो बच्चे छोटे हैं, ये जुमले होते हैं, जब शादी का मामला आएगा देखेंगे। मौलाना सूफी थे हलाकू खान के, जब मुसलमान हो गया तो उसके मोहतम इन्होंने कहा कि रसद क्या बनाई है। अच्छा, हलाकू खान ने पूछा कि रसद गाह जो है वो फ़ायदा क्या होगा, और उन्होंने कहा कि ये शख्स इल्म से इतना वापस इससे शऊर नहीं है, इससे क्या बता रहा क्या करेगी, तो उसने कहा कि ये तुम्हारे मुस्तकबिल की पेशन गोइयाँ कैसे, मतलब तुमने अगर कोई जंग मुस्तकबिल में तुम्हारे पेश आने वाली तो वो ये पहले से प्रेडिक्शन हो जाएगी कि तुम जीतोगे या हारोगे। हलाकू खान ने कहा इसका मुझे इल्म हो जाएगी मैं जीतूँ या हारूँगा, मुझे फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं जंग में होऊंगा तो मैं दाखिल होकर जीतने की तदबीर नहीं डालूंगा, तो उसने रद्द कर दिया इसके मामले। अच्छा, इन्होंने कहा जरूरत है कि मैं एक मिसाल देता हूँ, एक काम करो कि एक दस्त लो और उसमें जो है ना वो अनवा इस्लाम की चीज़ें बर्तन ऐसे जो गिरने पे आवाज़ करें, और वो छत से गिराना, जब सब लोग आ जाए ना दरबार लग जाए सब बैठे हो ना तो उसको गिराना, फिर बताऊँगा इसके जवाब। अब वो जानता था कि साहिब इल्म लोग है, इल्म वाला है, ऐसे नहीं कह रहा कुछ बताएगा, उसने कहा चलो ठीक। अब दरबार लगा, बातें हो रही थी, ऊपर जो मुलाजिम था उसको गाड़ी लेके चले आना, चला गया, बातें होती रही। फिर थोड़ी देर बाद जब उसने इशारा किया या एक टाइम जो तय था उसके ऊपर उसने जो वो तर्ज गिरा दिया। अब जैसे ही बर्तन नीचे गिरा जितने भी लोग थे भागे कि पता नहीं क्या हो, वो उनसे बता तो इधर भाग रहा उधर भाग रहा, मौलाना सूफी और हलाकू खान बैठे थे। अब इन्होंने पूछा कि हम लोग क्यों बैठे हलाकू खान, हलाकू खान ने कहा इसलिए कि मुझे पता था ही होगा, कहते बिल्कुल यही बात है, अगर तुम जो है वो दिल या डिफिकल्टीज का पहले से प्लान कर लोगे तो मुश्किल आने पे तुम परेशान हो, तुम्हें ये फिक्र नहीं होगी कि आप यार ये चीज़ चली जाएगी तो क्या होगा, अगर ये नुकसान हो जाएगा तो क्या होगा, अगर बच्चे की शादी आने की तो क्या होगा, अगर उसको जॉब नहीं मिली बैंक में तो क्या होगा, आपको पता कुछ नहीं हो, आप परेशान नहीं हो, आप मुतमिन रहेंगे अपने मकसद की तरफ जो है बढ़ते रहेंगे, ये चीज़ बहुत है, इसलिए प्लानिंग और उन एंट्रेंसेज का जानना बहुत ज़रूरी है। आखिर में आते हैं इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एंड, यहाँ तक तो हम आ गए, एक चीज़ का तो हमें एहसास हो गया, एम और नीड का फर्क है क्या। अब उस एम और नीड का जब फर्क पता चल गया, हमारा एम होना चाहिए, एम होना चाहिए, एम टेंजेबल होना चाहिए, जब टेंजेबल एम हो गया तो उसके लिए हमारा प्लान होना चाहिए। अब वो प्लान अगर हमारा होगा तो अब उसके साथ साथ हमें ये जरूर भी होना चाहिए के एक इंफरादी एम, इंडिविजुअल एम और एक इज्तमाही एम में फ़र्क क्या होता है या इनका रिलेशनशिप क्या होता है। अगर ये हमें नहीं होगा तो हमारी मिसाल आज जो हम दीन का काम करने वाले लोग हैं उनकी बिल्कुल यही मिसाल है कि अपने कहीं जिस तरह मौलाना इमाम गज़ाली ने कहीं जिक्र किया है ना कि अंधों के पास हाथी आ गया या अंधेरे में उन्हें हाथी लिया, अब हाथ रखना शुरू किया उन्होंने, जिसके बाद जो हिस्सा आया उसने हाथी को ऐसे एक्सप्लेन किया, हाथी ऐसा होता है तो गोल सा होता है, जिसके बाद सूंड आए उसने का लंबा सा होता है, जिसके बाद सूंड आए उसने का गोल होता है, तो मुख्य जहाँ जहाँ हाथ पड़ा उसने बताया कि ये वैसा होता है। तो इमाम गज़ाली ने लिखा है कि अगर वो कहीं से एक चराग ले आते और रोशनी जला लेते तो उन्हें पता चल जाता हाथी कैसा होता। बिल्कुल इसी तरीके से एम तो पता चल गया, अब इसका कलेक्टिव एम जो हमारा है उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बहुत ही ज्यादा अहम सवाल है। इसकी बड़ी एक छोटा सा जुमला अगर मैं कहूँ कि इंडिविजुअल एम कंट्रीब्यूट इन अचीविंग कलेक्टिव एम, जो इंडिविजुअल एम है वो कंट्रीब्यूट करता है कलेक्टिव एम को अचीव करने के, तो आपको बेहतर तौर पर समझ में आना। मिसाल लेते हैं, अब अगर मैं एक इंस्टीट्यूशन की बात करता हूँ या एक आप लोग जिस भी प्रोफेशन से हैं, आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट इदारों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक इनफरादी जो फ़र्द है उसका इल्म हो सकता है कि मैं अपना एक ऐसा इमेज क्रिएट करूँ जो मेहनती हो, मेहनत करने वाला शख्स हो, अपनी तमाम चीज़ों को कमिटमेंट को जिम्मेदारियों को वक्त पर पूरा करता हूँ। अब जब वो ये काम करेगा तो उसका इंडिविजुअल एम हो, कलेक्टिव एम उस इदारे का इमेज है कि आवाम को बेहतर तौर पर खिदमत प्रोवाइड करें। अब उसमें जाहिर वाले कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, अगर ये जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा तो कंट्रीब्यूट कैसे करेगा। लेकिन अगर ये कोई शऊर नहीं है ना, तो ये इसका काम अगर से किसी और डायरेक्शन में, अगर इसकी जिम्मेदारी में तो इलावा एक दूसरों की मदद करा, लेकिन जो कलेक्टिव है ना उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करा, पर्सनल कैपेसिटी में दूसरों की मदद करा, इमेज अच्छा बन रहा है इसका, लेकिन एक कलेक्टिव एम जो है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। आज उसके मुम्मा का यही हाल, दीन का मेहनत करने वाले जो है ना उनका कलेक्टिव एम नहीं। अगर कोई कुरान की तरमीज कर रहा है तो कहता है कि कुरान की तरमीज ही असल मकसद है, अगर कोई तबलीग कर रहा है तो कहते हैं तबलीग ही असल मकसद है, अगर कोई जो है इंफाक की तबीलिल्ला कर रहा है तो कहते हैं इंफाक की तबीलिल्ला ही मकसद है। आज हम लोग यही कर रहे हैं, जिस्म की मिसाल बड़ी ज़बरदस्त है। देखिए हाथ जो है ना, हाथ पाँव, जब मैं इरादा करता हूँ ना कहीं जाने का, तो सारी बॉडी जो है ना एज अ यूनिट, एज अ यूनिफाइड बॉडी, यूनिफाइड ऑर्गन जो काम करती है। आंखें मेरी उस तरफ देख रही होती, कोई चीज़ आती नहीं रही, कान सुन रहे होते हैं कि कोई आवाज़ ऐसी आ रही है, कोई चीज़ आती नहीं रही कि जिससे जो है वो मेरी बॉडी को या उस तक पहुँचने को नुकसान हो। हाथ जो है वो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कोई चीज़ मैंने अगर उठाई भी है तो लेके चल गए, पाँव उस तरफ चला के ले जा रहे हो, और जहन वहाँ तक पहुँचने के लिए रस्ते में तमाम चीज़ों की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर कोई बीच में चीज़ आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई गड़ा आ जाता है, तो मैं अल्टरनेट रूट दे दूँ। यही मिसाल जो है मुस्लिम उम्मा की, जो कहा गया है ना कि तुम सब जिसमें वाहिद हो, तो क्यों कहा गया, इसीलिए कहा गया कि अगर कोई पैर की जगह है तो उसका काम तो पैर की जगह ले जाना है, लेकिन वो एक कलेक्टिव एम के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हाथ अपनी मर्जी से काम कर रहा है, पाँव अपनी मर्जी से काम कर रहा है, दिल अपनी मर्जी से काम कर रहा है, जिगर अपनी मर्जी से काम कर रहा है। आज हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं, जो हमारा इनफरादी एम है अल्लाह मियां की रजा, तो उसकी रजा के लिए फिर एक और चीज़ यहाँ वादे कर दूँ कि जो अब एक और चीज़ है, अल्लाह मियां कहते सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिल नईम, कि उस दिन तुमसे एक एक नेमत के बारे में पूछूंगा। पांच चीज़ों का सवाल हमको इल्म है कि हदीस में आता है कि एक शख्स उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं मिलेगा जब तक पांच चीज़ों का जवाब न मिले। जवानी कहाँ गुजारे, उम्र कहाँ गुजारे, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्चा, और अपने इल्म पर कितना अमल किया, ये चीज़ें जो है वो चीज़ें, ये इससे एक चीज़ ये भी पता चलती है कि अगर आपकी एफर्ट अप टू योर कैरेक्टरिस्टिक या अप टू योर क्वालिटीज या अप टू योर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो भी नाकाम हो जाएंगे। अल्लाह ने कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें यह सलाहियत दी थी और तुम जो काम करके आ गए बहुत छोटे, क्या कर लो। आज हम यही कर रहे हैं, पहले ये तय करना कि मेरी जो अल्लाह ने मुझे किस कैपेसिटी में काम करने के लिए तय किया, ये बहुत जरूरी है। वरना जिस तरह आज लोग हैं कि अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे फैम वाले लोग हैं, जिस तरह एक मौलिम है ना उससे उसके वक्त की जब कदर पूछ होगी ना, वो इसलिए होगी कि एक मौलिम जो है वो आम आदमी की मदद जैसे कोई चीज़ उठा के ले जानी है तो वो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मौलिम का काम ये शऊर देना है। अगर वो वहाँ से हट गया तो ये काम तो कोई और नहीं कर सकता, वो अपनी कैपेसिटी में सही काम नहीं कर सकता। आज हम लोग कुछ इस तरह भी अगर हमें ये पता चल जाता है कि अल्लाह की रजा है, ठीक है, तमाम जितने भी काम अल्लाह ने कुरान मजीद में कहे हैं वो सब करने वाले हैं, जहाँ जहाँ जब मौका आएगा करेंगे, लेकिन उन तमाम चीज़ों में अपने आप को लिमिट नहीं करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी काम, जितनी सुन्नतें हम कहते हैं हैं, पानी पीना एक सुन्नत है, ये एक सुन्नत जिंदा करने से सौ शहीदों का जज़्बा मिलता है, सही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोचने की बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये तमाम काम असल हैं या इनके ऊपर कोई काम था या कोई मकसद था जिसके अंदर ही आ, तो आपको एक चीज का एहसास होगा कि ये काम असल नहीं है, ये काम अपनी जिंदगी में एक्सीलेंस लाने के लिए तो बहुत जरूरी है। ये इंडिविजुअल एम है, इंडिविजुअल एफर्ट है जो कलेक्टिव एम तक ले जाने के लिए जरूरी है। तकवा जो है वो बहुत जरूरी है। अब इसी लिहाज से बाकी तमाम जो चीज़ें हमने करनी है, जो नीचे हमने करनी है, वो अपने आप को सही रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन असल में हासिल नहीं है, ये असल मकसद नहीं है। वो मकसद तो वो था इलाय कलमतुल्लाह, आप ध्यान दें, आपको फिक्र हर वक्त ये रहती है कि अल्लाह का दीन हमारी बात, अल्लाह का दीन सही से होकर उसके लिए छोड़ रहे हैं आप सब चीज़ें, आपने छोड़ दी दोस्तों का घर बार। आप देखें आप हिजरत की मुश्किल उठाएँ कितनी मुश्किल, तमाम जरूरियात को जो कुर्बान किया, घर वालों से जब नमाज का वक्त आता था ऐसे हो जाता था कि जैसे जानते नहीं ये चीज़ क्या जाहिर करती है। ये चीज़ यही जाहिर करती है कि वो तमाम जितने भी काम हैं वो एक मकसद के अंदर हैं। जब मकसद आपको वाजे होता है ना, तो आपको ये तारीफ करने में कोई परेशानी नहीं होती कि अब ज़रूरत कितनी है या उस ज़रूरत का मकाम क्या है और उसको कितना दिन रखना है। मुझे पता है कि अगर मेरी जिम्मेदारी में मैंने मकसद ये अपना चूज़ किया हुआ है कि एजुकेशन के लिए काम करना है, तो अपने अल्टरनेटिव भी मुझे ये भी मालूम है कि मुझे अपने घर वालों की जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए अदर मीन्स क्या मेरे पास, या अभी अगर मैं 10 घंटे की जॉब करता हूँ बाद में 10 घंटे की जॉब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये काम मेरा ज़्यादा हो जाएगा तो अल्टरनेट क्या होंगे, मैं अभी से उसके लिए स्टेप ले रहा हूँ। ये तमाम चीज़ें आपको पता हो, इन तमाम चीज़ों के हवाले से फिर मेहनत होती है। अच्छी कौम अगर हमारा मकसद है, मुस्लिम उम्मा में अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह मियाँ ने दीन वो है ना कि अल्लाह मियाँ आयत है जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह ने अपने दीन को तमाम दिनों पर गालिब कर दिया, ले ये तेरा हो अल दीन कुल लिही। अब वो तो अल्लाह ने कर दें, कब करेंगे, हमारा कंट्रीब्यूशन उसमें क्या होगा, या उसके लिए हम कैसे इंफरादी एम डिटरमिन करें कि हम इलाए कलमतुल्लाह में किस पार्ट पे काम कर रहे हैं। जिहाद भी चाहिए, मुअल्लिम भी चाहिए, मुबल्लिग भी चाहिए, हमें इंफाक की तबीला करने वाले भी चाहिए, लेकिन अपनी जो है देखें जहाँ हम जिस कैपेसिटी में वो कैपेसिटी नहीं छोड़ें। सहाबा ने क्या किया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल लेते हैं, उन आज जो कनाडा का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो हज़रत उमर के दौर, लेकिन हज़रत उमर का मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कायम करना हरगिज़ नहीं। जब वो मकसद था इलाए कलमतुल्लाह तो उसके लिए जो काम भी किया उसने एक्सीलेंस आ गया, उनको पता था मेरी कैपेसिटी ये है, हमें एक अगर अमीर बना दिया हो तो इन तमाम चीज़ों को क्या मकसद सोचना है। हम लोग जो है ना वो हम लोग आए नहीं, हम लोग भेजे गए हैं। अब जब हम लोग भेजे गए हैं तो हम लोग जो है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए नहीं भेजे गए, हम लोग अल्लाह मियाँ की अमानत को क्यामत तक के आने वाले लोगों तक पहुंचाने का जरिया है। चेंज जो होती है ना उसकी एक कड़ी अगर मिस हो जाए तो आप एंड तक नहीं पहुँच सकते। ये जो चेंज है क्यामत तक जो आने वाले लोग हैं उसमें एक कड़ी आज हम है। ये तमाम जिम्मेदारियाँ दीन के हवाले से जो आगे हमें करनी है ये हमने पास ऑन करनी है। ये पास ऑन कैसे करें, जाहिर सी बात है उसके लिए अगर मैं इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ तो मुझे हर एक इंजीनियरिंग फील्ड ही छोड़नी चाहिए। मुस्लिम उम्मा को साइंटिस्ट की भी ज़रूरत है, मुस्लिम उम्मा को बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। ये आने के आखिर में जो मैंने कहा था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें इंशाल्लाह अभी डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या है। अब तक जो हमारी डिस्कशन हुई इसमें कोई किसी किस्म का सवाल, क्योंकि जो हमारा एम और एक्शन पाथ का एक्चुअल जो चीज़ थी वो यहाँ एंड अप हो जाता है। असल में ये प्रायरिटीज जो है वो एक डिटेल में आपको जो हम देंगे ना एम एंड एक्शन पाथ उसके एंड के ऊपर डिटेल आउटलाइन है, जब आप उन सवालों का जवाब दे देंगे तो उसके बाद उसकी पूरी ट्रेनिंग है जिसमें ये तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। भैया वाले जो हिंडेंसेज डिफिकल्टीज आप करते हैं और एम को डिफाइन करते हैं तो उसमें डेफिनेटली पाथ को बनाते हुए प्रायरिटीज करनी पड़ती है, प्रायरिटाइज अगर नहीं करेंगे तो पाथ नहीं बनता। जी ये वो देखें इसमें जो हासिल आप ही कहते हैं कि मैं बताऊँ, मैं आपको आपका एक्शन पास नहीं बताऊँगा या आपका एम नहीं बताऊँगा। इस हमारी जो डिस्कशन है इसका हासिल हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि आप जो ये बने, इसका हासिल ये है कि आपको इन तमाम चीज़ों का शऊर खुद दिया जाए। हाँ आपके लिए एज ए कंसल्टेंट जो चीज़ें जो 5-6 सवाल होंगे उसमें लिखते हैं, उसमें जब आप जवाब देंगे उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं आपको कि आपने जो एम डिटरमिन किया है वो वाकई आपकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक है या इसमें ये कमी है, वो हम बिल्कुल एडवाइस करेंगे। उसके बाद हमारे पास लोग भी हैं तो वो हम उस कैपेसिटी में हैं, हम उसी कैपेसिटी में ही रहेंगे। आखिर में डिटरमिन आप करें, फैसले तक पहुँचाने के लिए और मुश्किल से आगाही के लिए जिस मदद की भी ज़रूरत है वो हम आपको देंगे। लेकिन काफ़ी हद तक आपका पॉइंट सही है। अब मतलब ये आ रहा है, लेकिन इसमें जो मैंने कहा था काउंसलर जो मशवरा आप करते हैं, अब उसमें जब मैंने आप सारी बात आप लोगों ने सुनी तो उसमें मैंने आपको बहुत छोटी छोटी मिसालें दी कि बच्चे के स्कूल का एडमिशन है, आप खुद फैसला नहीं करेंगे, आप मशवरा करेंगे उससे, एजुकेशनल एडवाइज़र आपका जो है या आपका जो कंसल्टेंट है उस आदमी के लिए जी जी हाँ उसने एक्सपर्ट ही गाइड करेगा। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि वो आपको जो गाइड करेगा वो एक्सपर्ट ही करेगा तो डेफिनेटली वो एक एक्सपर्ट हो, लेकिन वो एक्सपर्ट ऐसा नहीं होगा जिसके पास MBA PhD हो लेकिन वो उसको दीन का शऊर हो। मशवरा लेने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आपको याद हो सूरह कहफ में आता है ना कि जिस शख्स के दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया आप उसकी तरफ रुजू नहीं करें। कुरान में तो हमें तालीम दी गई कि शख्स से रुजू करना है, तो आपको ऐसे शख्स मौजूद है हमारे पास, बता सकता हूँ मैं, हमारे पास लिंक्स हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनके मुस्तकिल रास्ते में आप लोग रहिएगा, आते रहिएगा तो यहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी। हम और चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे इंशाल्लाह इसके लिए। देखें ये देखें अल्लाह ने हमेशा रास्ता रखा हो, अल्लाह ने नैनो ऐसे नहीं है कि किसी को रास्ता ना, सूरह नूह में आता है ना फकुल तुस्तगफिर रब्बका इन्नहु काना गफ्फारा वयुर्सिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। अगली आयत में आता है ये नूह अलैहि सलाम ने कहा है कौम अल्लाह ने से मगफिरत करो, क्यों करो, अल्लाह ने बहुत बरसने वाला है, वो तुम्हें क्या देगा, आसमान से पानी बरसाएगा। अब पानी बरसा दिया यानी नेमतों की फरमानी करेगा। फिर अगली आयत में अल्लाह ने कहते हैं कि मवेशियों से तुम्हारे बेटों से और जितने भी रिस्क के असबाब हैं उनसे तुम्हारी मदद करेगा, एक स्तर पार जैसा कुछ मिलता है। तो आप अगर कुछ ऐसी बात हो गई जो आप समझते हैं कि गुनाहें जारिया हैं तो उसके अल्टरनेट के तौर पर आप सवाब जारिया करें, ठीक है। लेट्स एक मिसाल देता हूँ, गुलूकार था उसने कैसे जो है गाने की थी, अब जब तक वो रहेंगी ये गुनाहें जारी है, वो जो सुनेगा उससे जो जो देखेगा वो गुनाहें जारी है उसको पहुँचेगा। अब अगर उसको शऊर आया किसी भी ज़िंदगी के स्टेज अब क्या करें, तो उसके लिए वो ये करे कि वो सवाब जारी करे, कोई ऐसा काम करे कि जो लोगों तक पहुँचे और लोग जो है उससे हमेशा फ़ायदा उठाते। तो होगा ये कि जब आप चले भी जाएंगे कोई किताब लिख दें, कोई इदारा बना दें, अपने बेटों में से अगर कोई ऐसा है किसी को जो है हाफिज़ बना दें, मुस्लिम उम्मा के लिए वक्फ कर दें, अगर वो इस एज में अगर वो नहीं कर सकते आम मुसलमानों के बच्चों में से किसी को बना दें। बहुत जगह है कंट्रीब्यूशन के लिए, जब तक ज़िंदगी है आखिरी सांस है, अल्लाह मियाँ ने बहुत रूम दिया, अल्लाह मियाँ की रहमत हर चीज़ से वसी है। ऐसा नहीं है आप लोग यार से समझे अगर ज़िंदगी का बहुत बड़ा अच्छा उधार दिया और अब ये शऊर मिल रहा है तो अब आप नाकाम हो, हर चीज़ नहीं। आप लोगों का जो तजर्बा है, जो इल्म है, उससे आप दूसरों को आगाह कर सकते हैं, जो गलतियाँ आपने की उसके बारे में आप लोगों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि भाई ये गलतियों के ये नतीजे हैं हमारी ज़िंदगी में देखिए, ये तो हम कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है जारी है दूसरों को बताने के। फिर वो वाली मिसाल आती है खैरुन नास मिन यनकौम नास, बेहतरीन इंसान की बात है मुसलमान की बात है, मुसलमान का तो इससे बात ऊपर जो है बहुत आगे जाके शुरू होता है इसको, मुसलमान तो सारी कायनात के लिए, ये तो इंसान की बात है कि इंसान वो बेहतरीन है दूसरों के लिए ज़्यादा नफा पहुँचे, वो नफा पहुँचाएँगे आप। ये इंडिविजुअली फिर होता है कि एक कंसल्टेंसी में इंडिविजुअली बताया जाता है कि इससे किससे क्या कौन कर सकता है। जाहिर सी बात है कि जब मुआलिज कोई भी इलाज तजवीज़ करता है तो वो ग्लोबल नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता कि आप यही दवाई करें और ये एहतियात इख्तियार करें। जनरल गाइडलाइन सबके लिए होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर किसी को कोई मर्ज है तो उसके हिसाब से बताए, तो उसकी कंसल्ट लेनी चाहिए। अभी जो शुरू में हमने बात की ये उस पर बात करें, ठीक है, ये जो चीज़ है हमारी, एक सवाल मैंने पूछा था दीन के साथ साथ दुनिया होनी चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि हाँ होनी चाहिए। चलें एक मिसाल देता हूँ, आप ही लोगों से सवाल करता हूँ, आपको जवाब इसका मिल जाएगा। मुझे बताएं कि चलें मैं आपकी बात मान लेता हूँ, दिन के साथ दुनिया होनी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो दुनिया की तालीम है, अच्छा साइंटिस्ट या स्टेटस अचीव करने के लिए मुझे ज़रूरियात हैं, उसकी मुझे मेहनत करनी, ठीक है, करनी। दीन हमें कहता है कि चोरी नहीं करो, फ़ायदा किसको हो रहा है? लंगे को फ़ायदा, दीन को फ़ायदा नहीं, हमें फ़ायदा है ना, इंसानों को फ़ायदा। दीन कहता है कि मामलात में सच्चाई इख्तियार करो, कोलू कौलन संजीदा, जब भी बात करो सीधी सच्ची साफ करो, दो माये नहीं निकलने चाहिए, इससे फायदा किसको है? अल्लाह ने को या दीन को? हम खुद को। दीन कहता है कतल नहीं करो, इसका फायदा किसको हो रहा है? हमें हो रहा है ना, अल्लाह ने को तो नहीं हो रहा ना, दीन को हो रहा है। इस तरीके से दीन कहता है कि मामला में हेर फेर नहीं करो, फायदा किसको हो रहा है? ईसाई अहद करो, ईसाई ऐसे फायदा तो मुझे हो रहा है कि लोगों में क्रेडिबिलिटी मेरी बढ़ रही है, कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन ये हुक्म तो दीन का है ना, दुनिया बढ़ रही है, बिजनेस जो बगैर ईसाई अहद या अपने कमिटमेंट्स को पूरी किए हुए नहीं हो सकता। जैसे भी अगर बिजनेस अवस्था के लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत बेहतर तौर पर जानते हैं कि ईसाई अहद के बगैर तो हो ही नहीं सकता ये काम, आला वैल्यूज के प्रमोशन के बगैर हो ही नहीं सकता। ये काम किसका है? दीन के। दुनिया क्या है? एक बड़ी ऐसी तारीफ है इसकी, मेरा ख्याल है कि इमाम गजाली ये चाहिए, वो है दुनिया किसको कहते हैं ये जाने, वो चीज़ हर वो चीज़ जो आपको अल्लाह मियाँ से गाफिल कर दे वो दुनिया, इसको लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हर वो चीज़ जो आपको अल्लाह की याद से या अल्लाह मियाँ से गाफिल कर दे वो दुनिया। दुनिया इसको नहीं कहते कि गाड़ी आ गई, दुनिया इसको नहीं कहते कि पैसा आ गया। अगर मेरे पास जो करोड़ों रुपए और मैं अल्लाह मियाँ के, मुझे इस जगह रहती है कि अल्लाह मियाँ को राज़ी कर लूँ, जैसे हज़रत उस्मान का वाक्य आता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि जाओ उस्मान के पास चले जाओ, एक ज़रूरतमंद आया, उससे कहना वो तुम्हारी आदत पूरी कर देगा। अब वो पहुँचा हज़रत उस्मान के घर के सामने, अंदर से आवाज़ आ रही थी, आप अपनी रोजा को जो है डांट रहे थे कि कल तुमने जो है वो चिराग में तेल ज़्यादा डाल दिया और बत्ती ऊँची कर दी थी, जिस ये ज़्यादा जाया हो इसकी कौन जो है वो करेगा, इसका हिसाब कौन देगा? तो उसके दिल में आई है जो शख्स अपने घर में जो इतनी छोटी सी चीज़ पर डांट रहा हो वो मेरी क्या मदद करेगा? सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो बोल देता हूँ, जब तक भी आवाज़ भी बाहर आए आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और इस तरह से मामला। आप अंदर गए और दो थैले निकाल के दिया और एक थैले में पता नहीं कितने 4,000 या 8,000 दिरहम थे, वो दे दिए, वो हैरान हो गए। उसने कहा अभी तो ये मामला हो रहा था, अब ये मामला हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये तो अल्लाह के लिए। तो ये होता है फिर जब आपको सही ये चीज़ पता चल जाती है कि दीन है क्या और दुनिया क्या है। दुनिया ये थोड़ी है, दुनिया अगर अच्छा स्टेटस हासिल करना है दुनिया थोड़ी है, दीन ही कहता है आपको, दीन कहता है खैरुन्नास से मैं इन्फॉर्म नाथ, या दीन कहता है कि बेहतरीन इंसान बनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कहा गया कि मिसाल तुम्हारे लिए ये है, आज साइंस आप लोग साइंस जरूर पढ़ते होंगे, बायोलॉजी जो या डॉक्टर जो रिसर्च करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे करें, और उनकी रिसर्च ये कहती है कि जो सुन्नतें जितनी भी हैं वो सुन्नतें जो हैं वो बेहतरीन सेहतमंद इंसान के लिए ज़रूरी हैं। दाएँ करवट सोना हो, दिल के ऊपर बोझ नहीं पड़ता, गफलत की नींद नहीं आती, मेडिकल साइंस आज कहती है दिल की बीमारी नहीं होती, ये क्या है? دین تو ہے ہی، دنیا کچھ نہیں، دنیا صرف وہ ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر، بس اس کو یاد رکھیں، باقی سب دین، بس نیاز کی درستگی ہے۔ تو یہ جملہ کہنا دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہے، یہ اصل میں دین کی نفی، دین کو ناقص سمجھتے ہیں آپ کو، یا دنیا کو بہتر سمجھتے ہیں، جو دنیا کو ساتھ لا رہے ہیں دین، متوازن دین اور دنیا سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دین میں کسی قسم کی کمی ہے، دنیا میں کسی قسم کا اضافہ ہے جو دین میں نہیں؟ ماڈریٹ اسلام، انلائٹن اسلام، یہ سب دین کی نفی، ان تمام جملوں کو ہرگز ہرگز استعمال نہیں کریں۔ دین اور دنیا ساتھ ہونی چاہیے یا دین اور دنیا متوازن ہونی چاہیے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل صرف اسلام ہے، باقی کچھ نہیں ایکسیپٹیبل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری اس میں سب چیزیں، آپ یہ جو ہمارے سوسائٹی میں جملے اور اس طرح کے جو کانسیپٹ ڈیولپ کیے گئے ہیں ان کے پیچھے بہت بڑی لاجک ہے۔ لاشعوری طور پر ہمیں جو ہے نا وہ درار ڈالی جا رہی ہے دین سے دوری کی، کہ دین ناقص ہے، یہی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے، اور ظاہر کیا ہوتا ہے؟ تو جہاں یہ چیز سنیں اس کو کنڈیم کریں۔ کامیابی پورے کے پورے دین میں ہے، اور دین پہ عمل کرنے سے دنیا برباد نہیں ہوتی۔ صحابہ کی مثال لے لیں، آج کینیڈا والے ریسرچ کر رہے ہیں، امریکہ والے ریسرچ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، جرمنی میں ریسرچ ہو رہی ہے، ہم نہیں اپنا رہے ہیں، اور وہ اس کے فوائد سے بھی اس کو جو ہے وہ فائدہ مند ہو رہے ہیں۔ تو یہ چیز کلیئر ہوگی۔ پھر اس میں ایک اور چیز ہے، کچھ دیکھیں اس جی دیکھیے میں نے جملے گئے اس میں اگر آپ غور کریں تو میں نے کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ ان چیزوں کو حاصل نہ کریں، میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہمیں ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے، ہمیں انجینئرس کی بھی ضرورت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک سائنٹسٹ ہی ایکسپلور کرے گا نا، انوینشن ایک سائنٹسٹ ہی کرے گا، ایک عام آدمی تو نہیں کر سکتا نا، ہمیں ضرورت ہے اس کی۔ دنیا کے ڈیفینیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو سب چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ آپ تمام اسباب کے لیے آپ محنت کرتے ہیں اور اللہ نے آپ کو راضی کرنا ہے، مسلم امہ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، تو یہ دین ہی تو ہو گیا، دین یہی تو کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ اس میں اسنا کے طور پہ لیں گے نا تو اس میں بھی یہ سب چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ جی نہیں چائے تو خیر پی لیں گے، اصل میں زیادہ اہم کام یہ ہے، چائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کا حاصل اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کو بہتر طور پر ہم سمجھتے ہیں نا تو آپ کو بیلنس مل جائے گا سب لوگوں، کہیں افراد و تفرید آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں اس کو اسی اینگل سے ایکسپلور کرتے ہیں۔ صحابہ میں تمام لوگ، صحابہ میں حضرت عبد الرحمٰن بن عوف جو ہیں وہ اشعہ مبشرہ کے صحابی ہیں، بہت مالدار تھے، عثمان غنی مالدار تھے، وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جہاں جس شعبے میں ہیں وہاں کیسے آپ دین کے لیے کام کریں گے، یہ امپورٹنٹ سوال، اور یہی حاصل ہے جو ہم لوگ اس کی ڈسکشن یا ہم لوگ جو کر رہے ہیں۔ آپ کو اگر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اس پریزنٹیشن کا حق ادا ہو گیا۔ آپ اس کے بعد کیسے کریں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے شارٹ اسپین آف ٹائم میں نہیں ہوتا۔ एक और सवाल है, दीन और दुनिया को अगर हम साथ नहीं रखते और अगर किसी को ये कहा जाए कि ये काम दुनियावी है, दीन ये नहीं कहता, तो जवाब मिलता है कि दीन और इस्लाम का मकसद ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाओ, दीन भी रखो और दुनिया भी रखो, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? देखें, ये चीज़ को अभी हमने मिसाल से समझ ली कि अगर किसी चीज़ को दीन मना करता है तो उसकी वजह अगर आपको वाजे तौर पर क्लियर कर दें क्या है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें कुछ ना कुछ मुजमेरात होंगे, कुछ ना कुछ जो है वो आपके लिए परेशानियां होंगी जब ही दीन मना करता है, वरना दीन किसी चीज़ की जायज़ चीज़ के लिए लिमिटेशन नहीं लगा। जितना मर्जी कमाओ, जितना मर्जी खाओ, इस्लाम का जो मकसद है, दीन असल हमें दुनिया में बेहतरीन इंसान बनाता है। अब ये हमारे इल्म की कमी है कि हमें नहीं पता कि मामलात में दीन क्या कहता है। अगर किसी को मना करना है तो मना कैसे करना, और अगर किसी को किसी की तरफ बुलाना है तो कैसे बुलाना, उसके मुजमरात क्या हैं, उसके पॉजिटिव क्या हैं, उसके नेगेटिव क्या हैं, ये तो हमारी अपनी स्टडी है। साइंटिफिकली आपको पता होना चाहिए, लिबास का पता होना चाहिए कि लिबास कदमों से अगर आप नीचे करते हैं तो इससे जो चीज़ फ्रेंच एक बुटीक है उसके ऊपर लिखा हुआ है, कमर में दर्द होती है आप अगर कदमों से नीचे लिबास रखते हैं। एड़ी अगर आप ऊँची पहनते हैं तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन में हाइट कम हो जाएगी। दीन बहुत सारी चीज़ों से जो मना करता है, खादमी के चीज़ लाता है, साइंटिफिक रिसर्च अगर हमारे पास इल्म हो बेहतर तौर पर हम उसको बता सकते हैं, और इस सवाल का बेहतर तौर पर हम जवाब दे सकते हैं कि दुनिया से कट जाओगे। भाई दुनिया से कैसे कट जाओगे, दुनिया में तो सिर्फ दीन वो चीज़ें मना कर रहा है जो तुम्हें नुकसान पहुँचाती है, उसके अलावा तो कोई चीज़ मना नहीं कर रहा, उसके अलावा तो सब करो, तस्खीर कायनात करो, इतना भी हल्की समावादी व लर्ज वाली बात है, दीन तो खुद कहता है, आफा याद लोन वाली बात तो दीन कहता है, दुनिया कहाँ कहती है कि तुम गौर व फिक्र करो, दुनिया तो कहती है कि जो जैसा है जहाँ करते रहो, जिस चलो उस तरफ जिधर की हवा दुनिया की अच्छी, दीन कहता है तुम्हारे अपने उसूल होने चाहिए और उन उसूलों पे तुम जो खोलो सबको मैार, वो चीज़ें हमारे जब दीन का सही इल्म आ जाएगा हमारे पास। देखें, दीन सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं, मामलात, मुआशरत और इबादत, पांच हिस्से हैं दीन के जी, मामलात, मुआशरत, ये तमाम चीज़ें भी दीन के अंडर अगर आप आएंगी तो फिर हासिल होगा आपको, तमाम उससे वो मिलेंगे। नहीं, दुनिया, दुनिया मैंने अगर आप उस डेफिनेशन को दुनिया को कहें ना तो दुनिया सिर्फ वही है, अल्लाह ने की याद से गफलत जो चीज़ करती है वो दुनिया है असल में। वैसे अगर आप इन अस्बाब को दुनिया कह रहे हैं उस मायनों में तो आप सही हैं, ठीक है, मैं जो दुनिया इस्तेमाल कर रहा हूँ इस मायने में करोगे दुनिया के बिल्कुल बिल्कुल, देखो असल में देखिए दीन ही है ना, दीन ही हमें वो लिमिटेशन बता रहा है, तो कॉन्सेप्चुअली जो है ना दुनिया के लफ्ज साथ लाने से जो मैंने जिस शायद बाजे वो बेहतर होता नहीं कर सका। अब जो चीज़ें हम आपको ऑफर कर रहे हैं वो सुन लें, अभी करंट आने वाले इवेंट्स में जो है वो रमजान मैनेजमेंट है। देखिए, शाबान की ज़िंदगी और शवाल की ज़िंदगी एक जैसे नहीं होनी चाहिए, जो कमजोरियाँ, जो कमी, जो कोताही शाबान में है वो शवाल में नहीं होनी चाहिए। अगर शवाल में है तो समझ लें रमज़ान में कुछ नहीं चाहिए, रमज़ान के क्या गोल्स होने चाहिए, रमज़ान को कैसे प्लान करना है, कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं जो इस रमज़ान में मैं दूर करूँगा और हमेशा के लिए मेरी ज़ात से निकल जाएंगी, ये करने का काम है जो इमीडिएटली आ रहा है। इसके लिए हमारा पूरा रमज़ान मैनेजमेंट का एक तीन साढ़े तीन चार घंटे की ट्रेनिंग कह लें या वर्कशॉप कह लें वो होती है। फिर काउंसलिंग के हवाले से जिस चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, कंप्लीट एजुकेशनल काउंसलिंग है, कैरियर काउंसलिंग है, कैरियर कैसे बिल्ड करना है, एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बनना है, आपके वाकई आपकी कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक ये है या नहीं है, फैमिली काउंसलिंग है। नेक्स्ट सर, ये कॉन्टेक्ट तो मैं आगे चलें इससे भी साइड, फैमिली काउंसलिंग के जो पॉइंट हैं उनमें जो हम चीज़ें बहुत डिटेल में बताते हैं, जो एक कंटिन्यूस हमारा प्रोसेस है, इंटैक्ट उसमें एम ऑफ लाइफ है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, हेल्थ मैनेजमेंट है, खाने पीने के हवाले से किस एज के किस बच्चे को क्या ज़रूरत है, कितनी परेशानी खवातीन को या घर वालों को करनी चाहिए खाने पकाने में, अल्टरनेटिव मील्स क्या है, एज के हवाले से किन चीज़ों की खुराक में ज्यादती और किन चीज़ों की खुराक में कमी होनी चाहिए, एजुकेशन मैनेजमेंट उसकी तालीम के हवाले से किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, बजट कैसे मैनेज करेंगे घर का कि तमाम चीज़ें आप जो है वो मुखलिस ना हो और करते रहें, डायमेंशन ऑफ करेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे, स्लीप मैनेजमेंट कैसे होगी, कितने घंटे सोना है और सोने में क्या रिजल्ट अचीव करने हैं, इवेंट मैनेजमेंट के आने वाले जैसे कोई भी इवेंट्स आ रहे हैं उसको कैसे मैनेज करना है, शादी आ रही है आ रहा है वो आ रहा है उसके लिए आपने तमाम चीज़ों को कैसे प्लान करना है, थ्योरी ऑफ फाइव प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और एवोल्यूशन या इनोवेशन और एवोल्यूशन, वर्ल्ड फिलोसफी क्या है, और दो और चीज़ें हैं वो भी जो है वो एक थेरेपीज हैं जो हैं आखिर में हमारे आते हैं, इन तमाम चीज़ों का फैमिली कंसल्टेंसी में ये कवर्ड है, ये होती हैं मुस्तकिल है, वन डे वन वीक का नहीं है, ये एक कंटिन्यूस हमारा प्रोसेस होता है जिसमें अगर आप लोग आना चाहते हैं या मदद लेना चाहते हैं तो हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर मदद करेंगे। आप आखिर में जो चीज़ मेरा कॉन्टेक्ट था वो आपको मैं बता दूँ, वो नोट डाउन कर लें, जी सर जी डॉक्टर इलियास साहब के पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जो चीज़ें आपने करनी है उसमें एक चीज़ तो ये है कि वो आपने हैंड आउट जो हम दिया यहाँ से आप लेंगे उसको फिल आउट करके वापस करना है, और दूसरा जो है वो आप ईमेल एड्रेस है मेरा, अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं किसी भी हवाले से अगर मैं हेल्पफुल हो सकता हूँ ईमेल नोट कर लें, मुझे मेल कर दें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा, जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं हमारे पास जो और चीज़ मौजूद लोग हैं, ठीक है फिर इसकी कभी नहीं फिर उसमें किसी किस्म की कोई कॉस्ट नहीं। अच्छा एक चीज़ से वाकई में दो तीन आयात हैं जो मैंने निकाली थी वो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग के सामने बयान कर दूँ कि वो बहुत अहम है और उस पर ज़रूर गौर कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। अच्छा सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا, مثال کس کے لیے ہیں, اس کے لیے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اور یوم آخرت کا یقین رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو, اس کی سورہ احزاب آیت نمبر 21। اچھا जो मैंने बात की कि एमलेस ज़िंदगी जब आप गुजार लेते हैं तो फिर क्या होता है, इसका सूरह कहफ का आखिरी रुकू में उन लोगों का अंजाम बताया गया है कि किन लोगों के आमाल गारत हो गए, अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया की मेहनत सारी गारत गई। अब आगे बताते हैं ये लोग अल्लाह की आयात का इनकार करने वाले, इनकार ज़ुबान से हो या अमल से हो, है तो इनकार ही ना, हम भी तो बहुत सारी चीज़ों को ज़ुबान से इनकार नहीं करते अमल से इनकार कर रहे हो, जब मुकाम आता है शादी का तो मर्जी होती है, मेहंदी भी होती है, माइयों भी होती है, सब चीज़ें होती, तो कहीं हमारे साथ भी ये वाला मामला ना हो जाए कि वहाँ पहुँचें तो कुछ ना हो। इसकी आखिरी आयत है कुल इन्नमा अना बशरुकुम मिस्लुकुम युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, आगे जो आता है मजमून वो है असल में फोकस हमारा, फमन कान यरजू लिखा रब्बिही, बस जो अल्लाह यहाँ से मिलने की उम्मीद रखता हो, दैट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वो क्या करे, पर यामल अमलन सॉलिहन, बस नेक अमल करता रहे, वला युशरिक इबादती की इबादत रब्बिही अहदा, कि अपनी इबादत में अब्दियत यानी बंदगी और गुलामी में किसी भी चीज़ में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे, हुक्म सिर्फ अल्लाह का हो, अपनी मर्जी नहीं चले। ये आयत नंबर सूरह कहफ की आखिरी आयत, और ये इससे पहले वाली जो है वो उसी रुकू में है, दो दिन आयत पहले। फिर एक और चीज़ है अल्लाह ने जो बताई है, दो चीज़ें हैं जिसका आज हम शिकार हैं, एक तो है इस बार जो अल्लाह ने आता अजाब है हमारे पर, इस बार कहते हैं इसको कि आपका जो है ना वो नुकसान हो गया और आपको एहसास भी नहीं, आज हमारे को एहसास भी नहीं, जाहिर है हम डिसिप्लिन है नहीं, सिग्नल हम तोड़ते हैं, दुनिया की किसी भी जगह हम मौजूद नहीं, फिर भी हम उसके ऊपर अकड़े हैं, ये इस बात को है अल्लाह मियां का जो है वो अजाब है कि हमें जो है वो उस चीज़ का एहसास भी नहीं हो रहा कि हम नाकाम हो रहे हैं, हम नाकाम हो गए हैं अगर हमने अपनी रविश को नहीं बदला। इसी सिलसिले की एक और आयत है सूरह यूनुस की आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8, इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, और जो जिन लोग जो लोग रुजू नहीं करते और हमसे मिलने की तमन्ना नहीं रखते। वर्ग बिल हयात दुनिया, और दुनिया की जिंदगी पर राजी हैं। वतमअन्नु बिहा, और उस पर मुतमिन भी है। राजी होना और मुतमिन होना दो अलग चीज़ें हैं। वल्लज़ीना हुम मिन आयातिना गाफिलून, और हमारी आयात से ये गाफिल हैं ये लोग, इनके लिए क्या है? उलाइका मावामुन नारक मा कानू यक्सिबून, कि जो ये अमल कमाते हैं ये करते हैं, इसकी बदौलत इनके लिए जहन्नुम की आग है। आज हम दीनदार हों या हम वैसे हों, हम लोग इन दो कैफियात का शिकार हैं, इत्मीनान का और राजी होने का। राजी होना ये कि मुझे एक चीज़ मिली, ठीक है, सही है। मुतमिन होना है, यार ये मेरे लिए बहुत काफ़ी है, अब मुझे स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं। दीनदार अगर नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा कर रहा है, तो उसको कोई परेशानी नहीं, वो कहते हैं मैं तो कामयाब हो गया। इस आयत में कुछ नहीं कहा गया कि ये काफिरों के लिए या गैर मुस्लिम के लिए, एक जनरल लॉ अल्लाह ने बता दिया। राजी हो गए, मुतमिन हो गए, किसी भी चीज़ पर नाकाम हो जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रोते थे रात को? सब चीज़ों के होने के बावजूद हज़रत उमर क्यों रोते? हज़रत उमर का वाक़या शहादत का है, वो बात करके एंड अप करता हूँ कि जब ईमान सही आता है ना, तो फिर परेशानी आ जाती है, फिर फिक्र आफत बढ़ जाती है। अगर वो नहीं आया तो समझे हम राजी नहीं हैं, मुतमिन नहीं। वो कैफियत अगर नहीं हुई हमारी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जब ज़ख्म लग गए, शहादत खून जो है वो बहुत ज़्यादा बहने लगा, और सब तमाम मामलों के लिए आपने अहकाम दे दिए, तो फिर आपने कहा कि अपने बेटे अब्दुल्ला से कि जाओ और जाके जो है वो हज़रत आयशा से रिक्वेस्ट करो कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने की इजाज़त दे। अगर वो खामोश है तो वापस आ जाना, सवाल नहीं कर, इंतज़ार भी नहीं करना, अगर देर हो जाए तो दोबारा इंसिस्ट नहीं कर, वापस इजाज़त मिल गई, इनको लेके जाते हैं। जब उजरे के बाहर पहुँचते तो कहते हैं मुझे नीचे रख, अब नीचे रख देते हैं। हज़रत उमर जो है अपने रुखसार जो है ना ज़मीन से रगड़ने लगे और रोते हुए कहते हैं कि ए उमर, तेरे लिए बर्बादी है। वही वही रुका, या उमर, तेरे लिए बर्बादी है। वैल है, अगर तुझे तेरे रब ने माफ़ नहीं किया तो तू बर्बाद हो जाएगा। कौन कह रहा है? वो जिसको ये कहा गया कि मेरे बाद नबी होगा तो उमर होगा, वो जिसको ये कहा गया कि उमर जन्नती, और उमर जिस रस्ते पे चलता है शैतान उस रस्ते पे नहीं आता। अल्लाह ने उसकी ज़ुबान से जो है वो हक को जारी कर दिया। कौन है वो शख्स? ये कह रहा है, क्यों कह रहा है वो? ये आयत जब खुलती है ना, अल्लाह ने वर्ग बिल हयात दुनिया वर्ग में अनु दिया, तो फिर उसकी कैफियत अल्टीमेटली ये होती है कि आप राजी नहीं रहते ईमान, आप बढ़ाते ही नहीं। क्यों? एक हदीस है कि जिसके दो दिन बाएतबार नेकी बराबर गुजरे, वो शख्स बर्बाद हो गया। आज 100 नेकियाँ किए हैं तो कल 101 करनी, आज अगर 1000 किए हैं तो कल 1001 करनी, ये दिन कहता है। अगर ये हम कर रहे हैं तो हम कामयाब हैं, अदरवाइज हम कामयाब हैं। वमा अलैना इल्ला बलाग। आप ई मेल है, मैं इंशाल्लाह आपके टाइम देखते हैं, आप बोलेंगे ना, आप लोग जमा हो जाएंगे किसी भी इशू पे जो सर वो जो आपके पास है ना, ये वाला मुझे दे दें, ये इन लोगों को इसको प्रेजेंटेशन को कॉपी कर लें, अगर इन लोगों को किसी को चाहिए
वक्त पड़ता रहा है।
असल में कंटिन्यूस है काउंसलिंग का प्रोसेस, जो मैंने कहा था ना कि एक चक्कर होना चाहिए आपकी जिंदगी में, जब फॉरन मसला आए तो दीन के हवाले से जो है वो आपको गाइड भी कर सके और दुनिया के हवाले से भी आपको बता सके कि यहाँ आपने ये करना है और यहाँ ये
खलीफा में जो मतलब वही
खलीफा इज्तमाही तौर पर अभी हमारी इज्तमाही जाने के लिए सफर के लिए हमें
वही थे। एक अगर ये हो, एक होगा तो वो सबको कंट्रोल कर सकता है, उन दस हमें को नहीं कर सकता। अल्लाह भी एक है, अल्लाह की स्थिति एक है, स्थिति साबित कैसा है, एक अल्लाह होगा दुनिया से रहेगी, तीन अल्लाह हमें नहीं कर सकते।
ये डॉक्टर साहब अगर फोन नंबर देना चाहें तो इनके साथ ये अगर देना चाहते हैं तो ये आप ये बस नंबर हैं मेरे सारे।
आपको मैं यूएसबी दे दी,
यूएसबी दे दी आपने मुझे, वो कॉपी कर लिया आपने? ठीक है, वो इनको दे दीजिएगा और ये चीज़ वरना आप लोग अगर इनको रिक्वेस्ट करेंगे आप कहिए आप 5 या 6 दिन में आप दे दीजिएगा, नेक्स्ट वेनसडे तक। अगर रमज़ान मैनेजमेंट अगर आप लोग करना चाहते हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रमज़ान में कैसे प्लान करेंगे।
आप भी अरेंज कर सकते हैं
यहाँ यहाँ कर
सकते
यहाँ कर सकते
हैं वो तो कल के बाद तो नहीं आएंगे ना, मतलब बता कल लास्ट में हमारा
नहीं, आप जिस दिन आप आएंगे ना दोबारा किसी एक दिन मुझे बता दें, मैं इंशाल्लाह
करना पड़ेगा आज ही बता दें।
अच्छा,
मतलब कल तक ज़्यादा ज़्यादा बता दें, मतलब परसों आखिरी दिन
मैं कोशिश करूँगा कि सैटरडे तक ना आप लोगों को रमज़ान मैनेजमेंट की और जो फैमिली काउंसलिंग जो आउटलाइन दिए ना हमने वो डिटेल आपको मिले यहाँ इनको दे, वरना आप जो है इनसे फ़ोन में कांटेक्ट में रहिएगा, जैसे ही पीर तक होती है तो वैसे यहाँ ऑन द वे आते जाते उसको पिक करना। सैटरडे या कोई भी इनको टाइम बता दें जिस टाइम पर आप लोग होंगे,
सैटरडे
नेक्स्ट बात करूँ ताकि आपको वो रमज़ान मैनेजमेंट या कोई भी अगर प्लेस करना है ना तो आपस में क्लास कोऑर्डिनेशन कर लें, मेजोरिटी जो लोग जिस टाइम पर आ सकते हैं वो अगर हमारे पास भी सैटरडे को हमारे ठीक है
कॉपी करने की बात कर रही
है, ये कॉपी आपको दे देंगे
यही बात कर रही
है यही हो सलाम अभी कांटेक्ट में रहिएगा, यहाँ जो चीज़ें फिल करके दीजिएगा और रमज़ान मैनेजमेंट आपस में डिस्कस कर लें किस टाइम पर रख सकते हैं, रमज़ान से पहले जो है रमज़ान मैनेजमेंट जरूर बहुत। ई मेल एड्रेस है ना मेरा, फ़ोन नंबर देखिए फ़ोन नंबर डॉक्टर साहब की बात है, अगर डॉक्टर इलियास आपको दे देते हैं तो मुझे कोई ऑफिस नहीं, ठीक है शुक्रिया। अच्छा आसिन किए कर रहे हैं लोग, हेलो जी मैं बस निकल रहा हूँ ऑफिस आ रहा हूँ, ओ मैं लेक्चर आ गया। हाँ जी हाँ नाल ले जाओ, उन्होंने कहो कि पैसे चलो दे देना वो अपने जाके दे, पहले फ़ोन कर लेना उन्होंने फ़ोन करके वो पुरानी एक रसीद ले जाएंगे, जो नहीं भी हो तो इधर वो बना देंगे रसीद, ठीक है हाँ ले जाओ हाँ पहले फ़ोन करके पता कर लेना आप है या नहीं, जफर उस्मानी साहब आप है। हाँ जी जफर साहब उन्होंने पहले आप ही फ़ोन कर, उन्होंने फ़ोन कर लें ओन जफर साहब जी अल्लाह अल्लाह। चलिए आपके लिए आप वो जो दिए थे आप इसको दे दीजिएगा, फिर हम टीचर्स के लिए इसको लेकर आएंगे, अब रमज़ान मैनेजमेंट या कुछ भी अगर आप करवाना चाहें एक मिनट से वो चैनल ले लें, जो भी करवाना चाहते हैं करना चाहते
हैं,
फिर हम जो वो एक कन्वीनियंट टाइम पे सैटरडे को सैटरडे को संडे को
32
से लेट हो
35 के करीब इधर बैठे थे,
अगर आप मुनासिब समझे तो उनको नंबर देते हैं।
नॉर्मल एक छोटी सी सजेशन थी आपको, वो ये थी कि ये जो कॉस्टली जो आपने वर्ड्स में आते हैं ना, मतलब ये देखिए कि यहाँ पर
नाम जाते हैं ठीक है ना, पाकिस्तान में लोग काउंसलिंग को इस तरह भी आप